प्रेरितों के काम अध्याय एक। हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब कार्यों के बारे में लिखा जिन्हें प्रारंभ से ही यीशु ने किया और उस दिन तक उपदेश दिया जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा अपने चुने हुए प्रेरितों को निर्देश दिए जाने के बाद उसे ऊपर स्वर्ग में उठा न लिया गया। अपनी मृत्यु के बाद उसने अपने आप को बहुत से ठोस प्रमाणों के साथ उनके सामने प्रकट किया कि वह जीवित है। वह 40 दिनों तक उनके सामने प्रकट होता रहा तथा परमेश्वर के राज्य के विषय में उन्हें बताता रहा। फिर एक बार जब वह उनके साथ भोजन कर रहा था तो उसने उन्हें आज्ञा दी,
यरूशलेम को मत छोड़ना, बल्कि जिसके बारे में तुमने मुझसे सुना है परमपिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की प्रतीक्षा करना, क्योंकि यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया था, किंतु तुम्हें अब थोड़े ही दिनों बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया जाएगा।
सो जब वे आपस में मिले तो उन्होंने उससे पूछा,
हे प्रभु, क्या तू इसी समय इसराइल के राज्य की फिर से स्थापना कर देगा?
उसने उनसे कहा,
उन अवसरों या तिथियों को जानना तुम्हारा काम नहीं है जिन्हें परमपिता ने स्वयं अपने अधिकार से निश्चित किया है, बल्कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम्हें शक्ति प्राप्त हो जाएगी और यरूशलेम में, समूचे यहूदिया और सामरिया में और धरती के छोरों तक तुम मेरे साक्षी बनोगे।
इतना कहने के बाद उनके देखते देखते उसे स्वर्ग में ऊपर उठा लिया गया और फिर एक बादल ने उसे उनकी आंखों से ओझल कर दिया। जब वह जा रहा था तो वे आकाश में उसके लिए आंखें बिछाए थे, तभी तत्काल श्वेत वस्त्र धारण किए हुए दो पुरुष उनके बराबर आ खड़े हुए और कहा,
हे गलीली लोगों, तुम वहाँ खड़े खड़े आकाश में टकटकी क्यों लगाए हो? यह यीशु जिसे तुम्हारे बीच से स्वर्ग में ऊपर उठा लिया गया, जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा वैसे ही वह फिर वापस लौटेगा।
फिर वे जैतून नाम के पर्वत से, जो यरूशलेम से कोई 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यरूशलेम लौट आए और वहां पहुंचकर वे ऊपर के उस कमरे में गए जहां वे ठहरे हुए थे। ये लोग थे पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, फिलिप्पुस, थोमा, बर्तुलमै और मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब, उत्साही शमौन और याकूब का पुत्र यहूदा। इनके साथ कुछ स्त्रियां भी, यीशु की माता मरियम और यीशु के भाई भी थे। ये सभी अपने आप को एक साथ प्रार्थना में लगाए रखते थे। फिर इन्हीं दिनों पतरस ने भाई बंधुओं के बीच खड़े होकर, जिनकी संख्या कोई 120 थी, कहा,
हे मेरे भाइयों, यीशु को बंदी बनाने वालों के अगुवा यहूदा के विषय में पवित्र शास्त्र का वह लेख जिसे दाऊद के मुख से पवित्र आत्मा ने बहुत पहले ही कह दिया था, उसका पूरा होना आवश्यक था। वह हम में ही गिना गया था और इस सेवा में उसका भी भाग था। इस मनुष्य ने जो धन उसे उसके निष्ठापूर्ण काम के लिए मिला था, उससे खेत मोल लिया, किंतु वह पहले तो सिर के बल गिरा और फिर उसका शरीर फट गया और उसकी आंतें बाहर निकल आई और सभी यरूशलेम वासियों को इसका पता चल गया, इसलिए उनकी भाषा में उस खेत को हक्लदमा कहा गया, जिसका अर्थ है लहू का खेत, क्योंकि भजन संहिता में यह लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें रहने को कोई ना बचे। इसलिए यह आवश्यक है कि जब प्रभु यीशु हमारे बीच था तब जो लोग सदा हमारे साथ थे उनमें से किसी एक को चुना जाए, यानी उस समय से लेकर जब से यूहन्ना ने लोगों को बपतिस्मा देना प्रारंभ किया था और जब तक यीशु को हमारे बीच से उठा लिया गया था, इन लोगों में से किसी एक को उसके फिर से जी उठने का हमारे साथ साक्षी होना चाहिए।
इसलिए उन्होंने दो व्यक्ति सुझाए, एक यूसुफ जिसे बरसब्बा कहा जाता था, यह यूस्तुस नाम से भी जाना जाता था, और दूसरा मत्तियाह। फिर वे यह कहते हुए प्रार्थना करने लगे,
हे प्रभु, तू सबके मनों को जानता है। हमें दर्शा कि इन दोनों में से तूने किसे चुना है जो एक प्रेरित के रूप में सेवा के इस पद को ग्रहण करे, जिसे अपने स्थान को जानने के लिए यहूदा छोड़ गया था।
फिर उन्होंने उनके लिए पर्चियां डाली और पर्ची मत्तियाह के नाम की निकली। इस तरह वह 11 प्रेरितों के दल में सम्मिलित कर लिया गया। प्रेरितों के काम अध्याय 2। जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक ही स्थान पर इकट्ठे थे। तभी अचानक वहां आकाश से भयंकर आंधी का शब्द आया और जिस घर में वे बैठे थे उसमें भर गया, और आग की फैलती लपटों जैसी जीभें वहां सामने दिखाई देने लगी। वे आग की विभाजित जीभें उनमें से हर एक के ऊपर आ टिकी। वे सभी पवित्र आत्मा से भावित हो उठे और आत्मा के द्वारा दिए गए सामर्थ्य के अनुसार वे दूसरी भाषाओं में बोलने लगे। वहां यरूशलेम में आकाश के नीचे के सभी देशों से आए यहूदी भक्त रहा करते थे। जब यह शब्द गरजा तो एक भीड़ एकत्र हो गई। वे लोग अचरज में पड़े थे क्योंकि हर किसी ने उन्हें उसकी अपनी भाषा में बोलते सुना। वे आश्चर्य में भरकर विस्मय के साथ बोले,
ये बोलने वाले सभी लोग क्या गलीली नहीं हैं? फिर हम में से हर एक उन्हें हमारी अपनी मातृभाषा में बोलते हुए कैसे सुन रहा है? वहाँ पार्थी, मेदी और इलामी, मिसुपुतामिया के निवासी, यहूदिया और कप्पू दूकिया, पुंतुस और एशिया, फुग्रिया और पंफुलिया, मिसर और साइरीन नगर के निकट लीबिया के कुछ प्रदेशों के लोग, रोम से आए यात्री जिनमें जन्मजात यहूदी और यहूदी धर्म ग्रहण करने वाले लोग, क्रेती तथा अरब के रहने वाले, हम सब परमेश्वर के आश्चर्यपूर्ण कामों को अपनी अपनी भाषाओं में सुन रहे हैं।
वे सब विस्मय में पढ़कर भौचक्के हो आपस में पूछ रहे थे,
ये सब क्या हो रहा है?
किंतु दूसरे लोगों ने प्रेरितों का उपहास करते हुए कहा,
ये सब कुछ ज्यादा ही नई दाखरस चढ़ा गए हैं।
फिर उन 11 के साथ पतरस खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर में लोगों को संबोधित करने लगा,
यहूदी साथियों और यरूशलेम के सभी निवासियों, इसका अर्थ मुझे बताने दो। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। ये लोग पिए हुए नहीं है जैसा कि तुम समझ रहे हो, क्योंकि अभी तो सुबह के 9 बजे हैं, बल्कि यह वह बात है जिसके बारे में योएल नबी ने कहा था। परमेश्वर कहता है, अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं सभी मनुष्यों पर अपनी आत्मा उंडेल दूंगा, फिर तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करने लगेंगे, तथा तुम्हारे युवा लोग दर्शन पाएंगे और तुम्हारे बूढ़े लोग स्वप्न देखेंगे। हाँ, उन दिनों मैं अपने सेवकों और सेविकाओं पर अपनी आत्मा उंडेल दूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। मैं ऊपर आकाश में अद्भुत कर्म और नीचे धरती पर चिन्ह दिखाऊंगा, लहू, आग और धुएं के बादल। सूर्य अंधेरे में और चांद रक्त में बदल जाएगा। तब प्रभु का महान और महिमामय दिन आएगा, और तब हर उस किसी का बचाव होगा जो प्रभु का नाम पुकारेगा। हे इज़राइल के लोगों, इन वचनों को सुनो। नाज़री यीशु एक ऐसा पुरुष था जिसे परमेश्वर ने तुम्हारे सामने अद्भुत कर्मों, आश्चर्यों और चिन्हों समेत जिन्हें परमेश्वर ने उसके द्वारा किया था, तुम्हारे बीच प्रकट किया, जैसा कि तुम स्वयं जानते ही हो। इस पुरुष को परमेश्वर की निश्चित योजना और निश्चित पूर्व ज्ञान के अनुसार तुम्हारे हवाले कर दिया गया, और तुमने नीच मनुष्यों की सहायता से उसे क्रूस पर चढ़ाया और कीले ठुकवा कर मार डाला। किंतु परमेश्वर ने उसे मृत्यु की वेदना से मुक्त करते हुए फिर से जिला दिया, क्योंकि उसके लिए यह संभव ही नहीं था कि मृत्यु उसे अपने वश में रख पाती, जैसा कि दाऊद ने उसके विषय में कहा है, मैंने प्रभु को सदा ही अपने सामने देखा है, वह मेरी दाहिनी ओर विराजता है ताकि मैं डिग ना जाऊं। इससे मेरा हृदय प्रसन्न है और मेरी वाणी हर्षित है। मेरी देह भी आशा में जिएगी, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ देगा, तू अपने पवित्र जन को क्षय की अनुभूति नहीं होने देगा। तूने मुझे जीवन की राह का ज्ञान कराया है, अपनी उपस्थिति से तू मुझे आनंद से पूर्ण कर देगा। हे मेरे भाइयों, मैं विश्वास के साथ आदि पुरुष दाऊद के बारे में तुमसे कह सकता हूँ कि उसकी मृत्यु हो गई और उसे दफना दिया गया और उसकी कब्र हमारे यहाँ आज तक मौजूद है, किंतु क्योंकि वह एक नबी था और जानता था कि परमेश्वर ने शपथ पूर्वक उसे वचन दिया है कि वह उसके वंश में से किसी एक को उसके सिंहासन पर बैठाएगा, इसलिए आगे जो घटने वाला है उसे देखते हुए उसने जब यह कहा था उसे अधोलोक में नहीं छोड़ा गया और ना ही उसकी देह ने सड़ने गलने का अनुभव किया। तो उसने मसीह की फिर से जी उठने के बारे में ही कहा था। इसी यीशु को परमेश्वर ने पुनर्जीवित कर दिया। इस तथ्य के हम सब साक्षी हैं। परमेश्वर के दाहिने हाथ सबसे ऊंचा पद पाकर यीशु ने परमपिता से प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा प्राप्त की और फिर उसने इस आत्मा को उंडेल दिया जिसे अब तुम देख रहे हो और सुन रहे हो। दाऊद क्योंकि स्वर्ग में नहीं गया सो वह स्वयं कहता है, प्रभु परमेश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों तले पैर रखने की चौकी की तरह ना कर दूं। इसलिए समूचा इज़राइल निश्चय पूर्वक जान ले कि परमेश्वर ने इस यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया था प्रभु और मसीह दोनों ही ठहराया था।
लोगों ने जब यह सुना तो वे व्याकुल हो उठे और पतरस तथा अन्य प्रेरितों से कहा,
तो बंधुओं हमें क्या करना चाहिए?
पतरस ने उनसे कहा,
मान फिराओ और अपने पापों की क्षमा पाने के लिए तुम में से हर एक को यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, फिर तुम पवित्र आत्मा का उपहार पा जाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए, तुम्हारी संतानों के लिए और उन सब के लिए है जो बहुत दूर है। यह प्रतिज्ञा उन सब के लिए है जिन्हें हमारा प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाता है।
और बहुत से वचनों के द्वारा उसने उन्हें चेतावनी दी और आग्रह के साथ उनसे कहा,
इस कुटिल पीढ़ी से अपने आप को बचाए रखो।
सो जिन्होंने उसके संदेश को ग्रहण किया उन्हें बपतिस्मा दिया गया। इस प्रकार उस दिन उनके समूह में कोई 3,000 व्यक्ति और जुड़ गए। उन्होंने प्रेरितों के उपदेश, संगत, रोटी के तोड़ने और प्रार्थनाओं के प्रति अपने को समर्पित कर दिया। हर व्यक्ति पर भय मिश्रित विस्मय का भाव छाया रहा और प्रेरितों द्वारा आश्चर्य कर्म और चिन्ह प्रकट किए जाते रहे। सभी विश्वासी एक साथ रहते थे और उनके पास जो कुछ था उसे वे सब आपस में बांट लेते थे। उन्होंने अपनी सभी वस्तुएं और संपत्ति बेच डाली और जिस किसी को आवश्यकता थी उन सब में उसे बांट दिया। मंदिर में एक समूह के रूप में वे हर दिन मिलते जुलते रहे। वे अपने घरों में रोटी को विभाजित करते और उदार मन से आनंद के साथ मिलजुल कर खाते। सभी लोगों की सद्भावनाओं का आनंद लेते हुए वे प्रभु की स्तुति करते और प्रतिदिन परमेश्वर जिन्हें उद्धार मिल जाता उन्हें उनके दल में और जोड़ देता। प्रेरितों के काम अध्याय 3। दोपहर बाद 3 बजे प्रार्थना के समय पतरस और यूहन्ना मंदिर जा रहे थे। तभी एक ऐसे व्यक्ति को जो जन्म से ही लंगड़ा था ले जाया जा रहा था। वे हर दिन उसे मंदिर के सुंदर नामक द्वार पर बैठा दिया करते थे ताकि वह मंदिर में जाने वाले लोगों से भीख के पैसे मांग लिया करें। इस व्यक्ति ने जब देखा कि यूहन्ना और पतरस मंदिर में प्रवेश करने ही वाले हैं तो उसने उनसे पैसे मांगे। यूहन्ना के साथ पतरस उसकी ओर एकटक देखते हुए बोला,
हमारी तरफ देख।
सो उसने उनसे कुछ मिल जाने की आशा करते हुए उनकी ओर देखा, किंतु पतरस ने कहा,
मेरे पास सोना या चांदी तो है नहीं, किंतु जो कुछ है मैं तुझे दे रहा हूँ, नासरी यीशु मसीह के नाम में खड़ा हो जा और चल दे।
फिर उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसने उसे उठाया तुरंत उसके पैरों और टखनों में जान आ गई और वह अपने पैरों के बल उछला और चल पड़ा। वह उछलते कूदते चलता और परमेश्वर की स्तुति करता उनके साथ ही मंदिर में गया। सभी लोगों ने उसे चलते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा। लोगों ने पहचान लिया कि यह तो वही है जो मंदिर के सुंदर द्वार पर बैठकर भीख मांगता था। उसके साथ जो कुछ घटा था उस पर वे आश्चर्य और विस्मय से भर उठे। वह व्यक्ति अभी पतरस और यूहन्ना के साथ साथ ही था। सो सभी लोग अचरज में भरकर उस स्थान पर उनके पास दौड़े दौड़े आए जो सुलेमान की ड्योढ़ी कहलाता था। पतरस ने जब यह देखा तो वह लोगों से बोला,
हे इसराइल के लोगों, तुम इस बात पर चकित क्यों हो रहे हो? ऐसे घूर घूर कर हमें क्यों देख रहे हो? जैसे मानो हमने ही अपनी शक्ति या भक्ति के बल पर इस व्यक्ति को चलने फिरने योग्य बना दिया है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु को महिमा से मंडित किया और तुमने उसे मरवा डालने को पकड़वा दिया और फिर पिलातुस के द्वारा उसे छोड़ दिए जाने का निश्चय करने पर पिलातुस के सामने ही तुमने उसे नकार दिया। उस पवित्र और नेक बंदे को तुमने अस्वीकार किया और यह मांगा कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। लोगों को जीवन की राह दिखाने वाले को तुमने मार डाला, किंतु परमेश्वर ने मरे हुओं में से उसे फिर से जिला दिया है। हम इसके साक्षी हैं, क्योंकि हम यीशु के नाम में विश्वास करते हैं। इसलिए यह उसका नाम ही है जिसने इस व्यक्ति में जान फूंकी है, जिसे तुम देख रहे हो और जानते हो। हाँ, उसी विश्वास ने जो यीशु से प्राप्त होता है तुम सबके सामने इस व्यक्ति को पूरी तरह चंगा किया है। हे भाइयों, अब मैं जानता हूँ कि जैसे अनजाने में तुमने वैसा किया वैसा ही तुम्हारे नेताओं ने भी किया। परमेश्वर ने अपने सब भविष्य वक्ताओं के मुख से पहले ही कहलवा दिया था कि उसके मसीह को यातनाएं भोगनी होंगी। उसने उसे इस तरह पूरा किया। इसलिए तुम अपना मन फिराओ और परमेश्वर की ओर लौट आओ, ताकि तुम्हारे पाप धुल जाएं, ताकि प्रभु की उपस्थिति में आत्मिक शांति का समय आ सके और प्रभु तुम्हारे लिए मसीह को भेजे जिसे वह तुम्हारे लिए चुन चुका है, यानी यीशु को। मसीह को उस समय तक स्वर्ग में रहना होगा जब तक सभी बातें पहले जैसी ना हो जाएं, जिनके बारे में बहुत पहले से ही परमेश्वर ने अपने पवित्र नबियों के मुख से बता दिया था। मूसा ने कहा था, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे लिए तुम्हारे अपने लोगों में से ही एक मेरे जैसा नबी खड़ा करेगा, वह तुमसे जो कुछ कहे तुम उसी पर चलना, और जो कोई व्यक्ति उस नबी की बातों को नहीं सुनेगा उनको पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। हाँ, शामिल और उसके बाद आए सभी नबियों ने जब कभी कुछ कहा तो इन ही दिनों की घोषणा की, और तुम तो उन नबियों और उस करार के उत्तराधिकारी हो जिसे परमेश्वर ने तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया था। उसने इब्राहिम से कहा था, तेरी संतानों से धरती के सभी लोग आशीर्वाद पाएंगे। परमेश्वर ने जब अपने सेवक को पुनर्जीवित किया तो पहले पहले उसे तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम्हें तुम्हारे बुरे रास्तों से हटाकर आशीर्वाद दे।
प्रेरितों के काम अध्याय 4। अभी पतरस और यूहन्ना लोगों से बात कर रहे थे कि याजक, मंदिर के सिपाहियों का मुखिया और कुछ सदूकी उनके पास आए। वे उनसे इस बात पर चिढ़े हुए थे कि पतरस और यूहन्ना लोगों को उपदेश देते हुए यीशु के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे। सो उन्होंने उन्हें बंदी बना लिया, और क्योंकि उस समय सांझ हो चुकी थी इसलिए अगले दिन तक हिरासत में रख छोड़ा। किंतु जिन्होंने वह संदेश सुना उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, और इस प्रकार उनकी संख्या लगभग 5,000 पुरुषों तक जा पहुंची। अगले दिन उनके नेता, बुजुर्ग और यहूदी धर्मशास्त्री यरूशलेम में इकट्ठे हुए। महायाजक हन्ना, कैफा, यूहन्ना सिकंदर और महायाजक के परिवार के सभी लोग भी वहां उपस्थित थे। वे इन प्रेरितों को उनके सामने खड़ा करके पूछने लगे,
तुमने किस शक्ति या अधिकार से यह कार्य किया?
फिर पवित्र आत्मा से भावित होकर पतरस ने उनसे कहा,
हे लोगों के नेताओं और बुजुर्ग नेताओं, यदि आज हमसे एक लंगड़े व्यक्ति के साथ की गई भलाई के बारे में यह पूछताछ की जा रही है कि वह अच्छा कैसे हो गया, तो तुम सबको और इज़राइल के लोगों को यह पता हो जाना चाहिए कि यह काम नासरी यीशु मसीह के नाम से हुआ है, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया और जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से पुनर्जीवित कर दिया है। उसी के द्वारा पूरी तरह से ठीक हुआ यह व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा है। यह यीशु वही, वह पत्थर जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने नकारा ठहराया था, वही अत्यंत महत्वपूर्ण पत्थर बन गया है। किसी भी दूसरे में उद्धार निहित नहीं है, क्योंकि इस आकाश के नीचे लोगों को कोई दूसरा ऐसा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो पाए।
उन्होंने जब पतरस और यूहन्ना की निर्भीकता को देखा और यह समझा कि वे बिना पढ़े लिखे और साधारण से मनुष्य हैं, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर वे जान गए कि ये यीशु के साथ रह चुके लोग हैं, और क्योंकि वे उस व्यक्ति को जो चंगा हुआ था उन्हीं के साथ खड़ा देख पा रहे थे, सो उनके पास कहने को कुछ नहीं रहा। उन्होंने उनसे यहूदी महासभा से निकल जाने को कहा, और फिर वे यह कहते हुए आपस में विचार विमर्श करने लगे,
इन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए,
क्योंकि यरूशलेम में रहने वाला हर कोई जानता है कि इनके द्वारा एक उल्लेखनीय आश्चर्य कर्म किया गया है, और हम उसे नकार भी नहीं सकते।
किंतु हम इन्हें चेतावनी दे दें कि वे इस नाम की चर्चा किसी और व्यक्ति से ना करें, ताकि लोगों में इस बात को और फैलने से रोका जा सके।
सो उन्होंने उन्हें अंदर बुलाया और आज्ञा दी कि यीशु के नाम पर वे ना तो किसी से कोई ही चर्चा करें और न ही कोई उपदेश दें। किंतु पतरस और यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया,
तुम ही बताओ, क्या परमेश्वर के सामने हमारे लिए यह उचित होगा कि परमेश्वर की ना सुनकर हम तुम्हारी सुने?
हम जो कुछ हमने देखा है और सुना है उसे बताने से नहीं चूक सकते।
फिर उन्होंने उन्हें और धमकाने के बाद छोड़ दिया। उन्हें दंड देने का उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल सका, क्योंकि जो घटना घटी थी उसके लिए सभी लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। जिस व्यक्ति पर अच्छा करने का यह आश्चर्य कर्म किया गया था उसकी आयु 40 साल से ऊपर थी। जब उन्हें छोड़ दिया गया तो वे अपने ही लोगों के पास आ गए और उनसे जो कुछ प्रमुख याजकों और बुजुर्ग यहूदी नेताओं ने कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया। जब उन्होंने यह सुना तो मिलकर ऊंचे स्वर में वे परमेश्वर को पुकारते हुए बोले,
स्वामी, तूने ही आकाश, धरती, समुद्र और उसके अंदर जो कुछ है उसकी रचना की है। तूने ही पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पूर्वज दाऊद के मुख से कहा था, इन जातियों ने जाने क्यों अपना अहंकार दिखाया, लोगों ने व्यर्थ ही षड्यंत्र क्यों रच डाले, धरती के राजाओं ने उसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार किया और शासक, प्रभु और उसके मसीह के विरोध में एकत्र हुए। हाँ, हेरोदेस और पिंतुस प्लातुस भी इस नगर में गैर यहूदियों और इसराइलियों के साथ मिलकर तेरे पवित्र सेवक यीशु के विरोध में, जिसे तूने मसीह के रूप में अभिषिक्त किया था, वास्तव में एकजुट हो गए थे। वे इकट्ठा हुए ताकि तेरी शक्ति और इच्छा के अनुसार जो कुछ पहले ही निश्चित हो चुका था वह पूरा हो। और अब हे प्रभु, उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को निर्भयता के साथ तेरे वचन सुनाने की शक्ति दे, जबकि चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ाए और चिन्ह तथा अद्भुत कर्म तेरे पवित्र सेवकों द्वारा यीशु के नाम पर किए जा रहे हो।
जब उन्होंने प्रार्थना पूरी की तो जिस स्थान पर वे एकत्र थे वह हिल उठा और उन सब में पवित्र आत्मा समा गया और वे निर्भयता के साथ परमेश्वर के वचन बोलने लगे। विश्वासियों का यह समूचा दल एक मन और एक तन था। कोई भी यह नहीं कहता था कि उसकी कोई भी वस्तु उसकी अपनी है। उनके पास जो कुछ होता उस सब कुछ को वे बांट लेते थे और वे प्रेरित समूची शक्ति के साथ प्रभु यीशु के फिर से जी उठने की साक्षी दिया करते थे। परमेश्वर का महान वरदान उन सब पर बना रहता। उस दल में से किसी को भी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जिस किसी के पास खेत या घर होते वे उन्हें बेच दिया करते थे और उससे जो धन मिलता उसे लाकर प्रेरितों के चरणों में रख देते और जिसको जितनी आवश्यकता होती उसे उतना धन दे दिया जाता था। उदाहरण के लिए यूसुफ नाम का साइप्रस में पैदा हुआ एक लेवी था जिसे प्रेरित बरनबास अर्थात चैन का पुत्र भी कहा करते थे। उसने एक खेत बेच दिया जिसका वह मालिक था और उस धन को लाकर प्रेरितों के चरणों पर रख दिया। प्रेरितों के काम अध्याय 5। हनन्याह नाम के एक व्यक्ति और उसकी पत्नी सफीरा ने मिलकर अपनी संपत्ति का एक हिस्सा बेच दिया और अपनी पत्नी की जानकारी में उसने इसमें से कुछ धन बचा लिया और कुछ धन प्रेरितों के चरणों में रख दिया। इस पर पतरस ने कहा,
हे हनन्याह, शैतान को तूने अपने मन में यह बात क्यों डालने दी कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और खेत को बेचने से मिले धन में से थोड़ा बचा कर रख लिया। उसे बेचने से पहले क्या वह तेरी ही नहीं थी? और जब तूने उसे बेच दिया तो वह धन क्या तेरे ही अधिकार में नहीं था? तूने इस बात की क्यों सोची? तूने मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है।
हनन्याह ने जब ये शब्द सुने तो वह पछाड़ खाकर गिर पड़ा और दम तोड़ दिया। जिस किसी ने भी इस विषय में सुना सब पर गहरा भय छा गया। फिर जवान लोगों ने उठकर उसे कफन में लपेटा और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। कोई 3 घंटे बाद जो कुछ घटा था उससे अनजान उसकी पत्नी भीतर आई। पतरस ने उससे कहा,
बता, तूने तेरे खेत क्या इतने में ही बेचे थे?
सो उसने कहा,
हाँ इतने में ही।
तब पतरस ने उससे कहा,
तुम दोनों प्रभु की आत्मा की परीक्षा लेने को सहमत क्यों हुए? देख, तेरे पति को दफनाने वालों के पैर दरवाजे तक आ पहुँचे हैं और वे तुझे भी उठा ले जाएंगे।
तब वह उसके चरणों पर गिर पड़ी और मर गई। फिर जवान लोग भीतर आए और मरा पाकर उसे उठा ले गए और उसके पति के पास ही उसे दफना दिया। सो समूची कलीसिया और जिस किसी ने भी इन बातों को सुना उन सब पर गहरा भय छा गया। प्रेरितों द्वारा लोगों के बीच बहुत से चिन्ह प्रकट हो रहे थे और आश्चर्य कर्म किए जा रहे थे। वे सभी सुलेमान के दालान में एकत्र थे। उनमें सम्मिलित होने का साहस कोई नहीं करता था, पर लोग उनकी प्रशंसा अवश्य करते थे। उधर प्रभु पर विश्वास करने वाले स्त्री और पुरुष अधिक से अधिक बढ़ते जा रहे थे। परिणाम स्वरूप लोग अपने बीमारों को लाकर चारपाइयों और बिस्तरों पर गलियों में लिटाने लगे, ताकि जब पतरस उधर से निकले तो उनमें से कुछ पर कम से कम उसकी छाया ही पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से अपने बीमारों और दुष्टात्माओं से पीड़ित लोगों को लेकर झुंड के झुंड लोग आने लगे और वे सभी अच्छे हो जाया करते थे। फिर महायाजक और उसके साथी यानी सदूकियों का दल उनके विरोध में खड़े हो गए। वे ईर्ष्या से भरे हुए थे, सो उन्होंने प्रेरितों को बंदी बना लिया और उन्हें सार्वजनिक बंदी गृह में डाल दिया। किंतु रात के समय प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोल दिए। उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा,
जाओ मंदिर में खड़े हो जाओ और इस नए जीवन के विषय में लोगों को सब कुछ बताओ।
जब उन्होंने यह सुना तो भोर के तड़के वे मंदिर में प्रवेश कर गए और उपदेश देने लगे। फिर जब महायाजक और उसके साथी वहां पहुंचे तो उन्होंने यहूदी संघ तथा इज़राइल के बुजुर्गों की पूरी सभा बुलाई। फिर उन्होंने बंदीगृह से प्रेरितों को बुलावा भेजा, किंतु जब अधिकारी बंदीगृह में पहुंचे तो वहां उन्हें प्रेरित नहीं मिले। उन्होंने लौटकर इसकी सूचना दी और कहा,
हमें बंदीगृह की सुरक्षा के ताले लगे हुए और द्वारों पर सुरक्षा कर्मी खड़े मिले थे, किंतु जब हमने द्वार खोले तो हमें भीतर कोई नहीं मिला।
मंदिर के रखवालों के मुखिया ने और महायाजकों ने जब ये शब्द सुने तो वे उनके बारे में चक्कर में पड़ गए और सोचने लगे,
अब क्या होगा।
फिर किसी ने भीतर आकर उन्हें बताया,
जिन लोगों को तुमने बंदीगृह में डाल दिया था वे मंदिर में खड़े लोगों को उपदेश दे रहे हैं।
सो मंदिर के सुरक्षा कर्मियों का मुखिया अपने अधिकारियों के साथ वहां गया और प्रेरितों को बिना बल प्रयोग किए वापस ले आया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं लोग उन्हें मंदिर के सुरक्षा कर्मियों को पत्थर न मारें। वे उन्हें भीतर ले आए और सर्वोच्च यहूदी सभा के सामने खड़ा कर दिया। फिर महायाजक ने उनसे पूछते हुए कहा,
हमने इस नाम से उपदेश न देने के लिए तुम्हें कठोर आदेश दिया था और तुमने फिर भी समूचे यरूशलेम को अपने उपदेशों से भर दिया है और तुम इस व्यक्ति की मृत्यु का अपराध हम पर लादना चाहते हो।
पतरस और दूसरे प्रेरितों ने उत्तर दिया,
हमें मनुष्यों की अपेक्षा परमेश्वर की बात माननी चाहिए। उस यीशु को हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने मृत्यु से फिर जिलाकर खड़ा कर दिया है, जिसे एक पेड़ पर लटकाकर तुम लोगों ने मार डाला था। उसे ही प्रमुख और उद्धारकर्ता के रूप में महत्व देते हुए परमेश्वर ने अपने दाहिने स्थित किया है, ताकि इसराइलियों को मन फिराओ और पापों की क्षमा प्रदान की जा सके। इन सब बातों के हम साक्षी हैं, और वैसे ही वह पवित्र आत्मा भी है जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं।
जब उन्होंने यह सुना तो वे आग बबूला हो उठे और उन्हें मार डालना चाहा, किंतु महासभा में से एक गमलियल नामक फरीसी, जो धर्मशास्त्र का शिक्षक भी था तथा जिसका सब लोग आदर करते थे, खड़ा हुआ और आज्ञा दी कि इन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर कर दिया जाए। फिर वह उनसे बोला,
इसराइल के पुरुषों, तुम इन लोगों के साथ जो कुछ करने पर उतारू हो उसे सोच समझ कर करना। कुछ समय पहले अपने आप को बड़ा घोषित करते हुए थियूदास प्रकट हुआ था और कोई 400 लोग उसके पीछे भी हो लिए थे, पर वह मार डाला गया और उसके सभी अनुयायी तितर बितर हो गए। परिणाम कुछ नहीं निकला। उसके बाद जनगणना के समय गलील का रहने वाला यहूदा प्रकट हुआ। उसने भी कुछ लोगों को अपने पीछे आकर्षित कर लिया था। वह भी मारा गया। उसके भी सभी अनुयायी इधर उधर बिखर गए। इसलिए इस वर्तमान विषय में मैं तुमसे कहता हूँ, इन लोगों से अलग रहो, इन्हें ऐसे अकेले छोड़ दो, क्योंकि इनकी यह योजना या यह काम मनुष्य की ओर से है तो स्वयं समाप्त हो जाएगा, किंतु यदि यह परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें रोक नहीं पाओगे, और तब हो सकता है तुम अपने आप को ही परमेश्वर के विरोध में लड़ते पाओ।
उन्होंने उसकी सलाह मान ली और प्रेरितों को भीतर बुलाकर उन्होंने कोड़े लगवाए और यह आज्ञा देकर कि वे यीशु के नाम की कोई चर्चा ना करें, उन्हें चले जाने दिया। सो वे प्रेरित इस बात का आनंद मनाते हुए कि उन्हें उसके नाम के लिए अपमान सहने योग्य गिना गया है, यहूदी महासभा से चले गए। फिर मंदिर और घर घर में हर दिन इस सुसमाचार का कि यीशु मसीह है उपदेश देना और प्रचार करना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा।
प्रेरितों के काम अध्याय 6। उन्हीं दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ रही थी तो यूनानी बोलने वाले और इब्रानी बोलने वाले यहूदियों में एक विवाद उठ खड़ा हुआ, क्योंकि वस्तुओं के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं के साथ उपेक्षा बरती जा रही थी। सो बारहों प्रेरितों ने शिष्यों की समूची मंडली को एक साथ बुलाकर कहा,
हमारे लिए परमेश्वर के वचन की सेवा को छोड़कर भोजन का प्रबंध करना उचित नहीं है।
सो बंधुओं, अच्छी साख वाले पवित्र आत्मा और सूझबूझ से पूर्ण 7 पुरुषों को अपने में से चुन लो। हम उन्हें इस काम का अधिकारी बना देंगे और अपने आप को प्रार्थना और वचन की सेवा के कामों में समर्पित रखेंगे।
इस सुझाव से सारी मंडली बहुत प्रसन्न हुई। सो उन्होंने विश्वास और पवित्र आत्मा से युक्त स्तिफनुस नाम के व्यक्ति को और फिलिप्पुस, प्रखरूप, निकानोर, तिमोन, परमिनास और अंताकिया के निकुलाउस को, जिसने यहूदी धर्म अपना लिया था, चुन लिया। और इन लोगों को फिर उन्होंने प्रेरितों के सामने उपस्थित कर दिया। प्रेरितों ने प्रार्थना की और उन पर हाथ रखे। इस प्रकार परमेश्वर का वचन फैलने लगा और यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। याजकों का एक बड़ा समूह भी इस मत को मानने लगा था। स्तिफनुस एक ऐसा व्यक्ति था जो अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण था। वह लोगों के बीच बड़े बड़े आश्चर्य कर्म और अद्भुत चिन्ह प्रकट किया करता था, किंतु तथाकथित स्वतंत्र किए गए लोगों के आराधनालय के कुछ लोग, जो कुरैनी और सिकंदरिया से तथा किलिकिया और एशिया से आए यहूदी थे, वे उसके विरोध में वाद विवाद करने लगे। किंतु वह जिस बुद्धिमानी और आत्मा से बोलता था, वे उसके सामने नहीं ठहर सके। फिर उन्होंने कुछ लोगों को लालच देकर कहलवाया,
हमने मूसा और परमेश्वर के विरोध में इसे अपमानपूर्ण शब्द कहते सुना है।
इस तरह उन्होंने जनता को, बुजुर्ग यहूदी नेताओं को और यहूदी धर्मशास्त्रियों को भड़का दिया। फिर उन्होंने आकर उसे पकड़ लिया और सर्वोच्च यहूदी महासभा के सामने ले आए। उन्होंने वे झूठे गवाह पेश किए जिन्होंने कहा,
यह व्यक्ति इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलते कभी रुकता ही नहीं। हमने इसे कहते सुना है कि यह नासरी यीशु इस स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देगा और मूसा ने जिन रीति रिवाजों को हमें दिया है उन्हें बदल देगा।
फिर सर्वोच्च यहूदी महासभा में बैठे हुए सभी लोगों ने जब उसे ध्यान से देखा तो पाया कि उसका मुख किसी स्वर्गदूत के मुख के समान दिखाई दे रहा था। प्रेरितों के काम अध्याय 7। फिर महायाजक ने कहा,
क्या यह बात ऐसे ही है?
उसने उत्तर दिया,
बंधुओं और पितृतुल्य बुजुर्गों, मेरी बात सुनो। हारान में रहने से पहले, अभी जब हमारा पिता इब्राहिम मिसोपोटामिया में ही था, तो महिमामय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिए और कहा, अपने देश और अपने लोगों को छोड़कर तू उस धरती पर चला जा जिसे तुझे मैं दिखाऊंगा। सो वह कसदियों की धरती को छोड़कर हारान में जा बसा, जहां से उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसे इस देश में आने की प्रेरणा दी, जहां तुम अब रह रहे हो। परमेश्वर ने यहां उसे उत्तराधिकार में कुछ नहीं दिया, डग भर धरती तक नहीं। यद्यपि उसके कोई संतान नहीं थी, किंतु परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की कि यह देश वह उसे और उसके वंशजों को उनकी संपत्ति के रूप में देगा। परमेश्वर ने उससे यह भी कहा, तेरे वंशज कहीं विदेश में परदेशी होकर रहेंगे और 400 साल तक उन्हें दास बनाकर उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाएगा। परमेश्वर ने कहा, दास बनाने वाली उस जाति को मैं दंड दूंगा और इसके बाद वे उस देश से बाहर आ जाएंगे और इस स्थान पर वे मेरी सेवा करेंगे। परमेश्वर ने इब्राहिम को खतने की मुद्रा से मुद्रित करके करार प्रदान किया और इस प्रकार वह इसहाक का पिता बना। उसके जन्म के बाद 8वें दिन उसने उसका खतना किया। फिर इसहाक से याकूब और याकूब से 12 कुलों के आदि पुरुष पैदा हुए। वे आदि पुरुष यूसुफ से ईर्ष्या रखते थे, सो उन्होंने उसे मिस्र में दास बनने के लिए बेच दिया, किंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसने उसे सभी विपत्तियों से बचाया। परमेश्वर ने यूसुफ को विवेक दिया और उसे इस योग्य बनाया जिससे वह मिस्र के राजा फिरौन का अनुग्रह पात्र बन सका। फिरौन ने उसे मिस्र का राज्यपाल और अपने घर बार का अधिकारी नियुक्त किया। फिर समूचे मिस्र और कनान देश में अकाल पड़ा और बड़ा संकट छा गया। हमारे पूर्वज खाने को कुछ नहीं पा सके। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है तो उसने हमारे पूर्वजों को वहां भेजा। यह पहला अवसर था। उनकी दूसरी यात्रा के अवसर पर यूसुफ ने अपने भाइयों को अपना परिचय दे दिया और तभी फिरौन को भी यूसुफ के परिवार की जानकारी मिली। सो यूसुफ ने अपने पिता याकूब और परिवार के सभी लोगों को, जो कुल मिलाकर 75 थे, बुलवा भेजा। तब याकूब मिस्र आ गया और उसने वहां वैसे ही प्राण त्यागे जैसे हमारे पूर्वजों ने वहां प्राण त्यागे थे। उनके शव वहां से वापस सेकेम ले जाए गए, जहां उन्हें मकबरे में दफना दिया गया। यह वही मकबरा था जिसे इब्राहिम ने हमोर के बेटों से कुछ धन देकर खरीदा था। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को जो वचन दिया था उसके पूरा होने का समय निकट आया तो मिस्र में हमारे लोगों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। आखिरकार मिस्र पर एक ऐसे राजा का शासन हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने हमारे लोगों के साथ धूर्ततापूर्ण व्यवहार किया। उसने हमारे पूर्वजों को बड़ी निर्दयता के साथ विवश किया कि वे अपने बच्चों को बाहर मरने को छोड़े ताकि वे जीवित ही ना बच पाए। उसी समय मूसा का जन्म हुआ। वह बहुत सुंदर बालक था। 3 महीने तक वह अपने पिता के घर के भीतर पलता बढ़ता रहा। फिर जब उसे बाहर छोड़ दिया गया तो फिरौन की पुत्री उसे अपना पुत्र बनाकर उठा ले गई। उसने अपने पुत्र के रूप में उसका लालन पालन किया। मूसा को मिस्रियों के संपूर्ण कला कौशल की शिक्षा दी गई। वह वाणी और कर्म दोनों में ही समर्थ था। जब वह 40 साल का हुआ तो उसने इसराइल की संतान अपने भाई बंधुओं के पास जाने का निश्चय किया। सो जब एक बार उसने देखा कि उनमें से किसी एक के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है तो उसने उसे बचाया और मिस्री व्यक्ति को मारकर उस दलित व्यक्ति का बदला ले लिया। उसने सोचा था कि उसके अपने भाई बंधु जान जाएंगे कि उन्हें छुटकारा दिलाने के लिए परमेश्वर उसका उपयोग कर रहा है, किंतु वे इसे नहीं समझ पाए। अगले दिन उनमें से उसके अपने लोगों में से जब कुछ लोग झगड़ रहे थे तो वह उनके पास पहुंचा और यह कहते हुए उनमें बीच बचाव का जतन करने लगा कि तुम लोग तो आपस में भाई भाई हो, एक दूसरे के साथ बुरा बर्ताव क्यों करते हो। किंतु उस व्यक्ति ने जो अपने पड़ोसी के साथ झगड़ रहा था मूसा को धक्का मारते हुए कहा, तुझे हमारा शासक और न्यायकर्ता किसने बनाया? जैसे तूने कल उस मिस्री की हत्या कर दी थी, क्या तू वैसे ही मुझे भी मार डालना चाहता है? मूसा ने जब यह सुना तो वह वहां से चला गया और मिद्यान में एक परदेशी के रूप में रहने लगा। वहां उसके 2 पुत्र हुए। 40 वर्ष बीत जाने के बाद सिनाई पर्वत के पास मरुभूमि में एक जलती झाड़ी की लपटों के बीच उसके सामने एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ। मूसा ने जब यह देखा तो इस दृश्य पर वह आश्चर्यचकित हो उठा। जब और अधिक निकटता से देखने के लिए वह उसके पास गया तो उसे प्रभु की वाणी सुनाई दी, मैं तेरे पूर्वजों का परमेश्वर हूँ, इब्राहिम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हूँ। भय से कांपते हुए मूसा कुछ देखने का साहस नहीं कर पा रहा था। तभी प्रभु ने उससे कहा, अपने पैरों की चप्पलें उतार, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मैंने मिस्र में अपने लोगों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को देखा है, परखा है। मैंने उन्हें विलाप करते हुए सुना है। उन्हें मुक्त कराने के लिए मैं नीचे उतरा हूँ। आ, अब मैं तुझे मिस्र भेजूंगा। यह वही मूसा है जिसे उन्होंने यह कहते हुए नकार दिया था, तुझे शासक और न्यायकर्ता किसने बनाया है? यह वही है जिसे परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत द्वारा, जो उसके लिए छाड़ी में प्रकट हुआ था, शासक और मुक्तिदाता होने के लिए भेजा। वह उन्हें मिस्र की धरती और लाल सागर तथा वनों में से 40 साल तक आश्चर्य कर्म करते हुए और चिन्ह दिखाते हुए बाहर निकाल लाया। यह वही मूसा है जिसने इसराइल की संतानों से कहा था, तुम्हारे भाइयों में से ही तुम्हारे लिए परमेश्वर एक मेरे जैसा नबी भेजेगा। यह वही है जो वीराने में सभा के बीच हमारे पूर्वजों और उस स्वर्ग दूत के साथ मौजूद था, जिसने सिनाई पर्वत पर उससे बातें की थी। इसी ने हमें देने के लिए परमेश्वर से सजीव वचन प्राप्त किए थे, किंतु हमारे पूर्वजों ने उसका अनुसरण करने को मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे नकार दिया और अपने हृदयों में वे फिर मिस्र की ओर लौट गए। उन्होंने हारून से कहा था, हमारे लिए ऐसे देवताओं की रचना करो जो हमें मार्ग दिखाए। इस मूसा के बारे में जो हमें मिस्र से बाहर निकाल लाया, हम नहीं जानते कि उसके साथ क्या कुछ घटा। उन्हीं दिनों उन्होंने बछड़े की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति पर बलि चढ़ाई। वे जिसे उन्होंने अपने हाथों से बनाया था उस पर आनंद मनाने लगे, किंतु परमेश्वर ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। उन्हें आकाश के ग्रह नक्षत्रों की उपासना के लिए छोड़ दिया गया था, जैसा कि नबियों की पुस्तक में लिखा है, हे इसराइल के परिवार के लोगों, क्या तुम पशु बलि और अन्य बलियां वीराने में मुझे नहीं चढ़ाते रहे 40 वर्ष तक? तुम मोलेक के तंबू और अपने देवता रिफान के तारे को भी अपने साथ ले गए थे। वे मूर्तियां भी तुम ले गए जिन्हें तुमने उपासना के लिए बनाया था। इसलिए मैं तुम्हें बाबुल से भी परे भेजूंगा। साक्षी का तंबू भी उस वीराने में हमारे पूर्वजों के साथ था। यह तंबू उसी नमूने पर बनाया गया था जैसा कि उसने देखा था और जैसा कि मूसा से बात करने वाले ने बनाने को उससे कहा था। हमारे पूर्वज उसे प्राप्त करके तभी वहां से आए थे जब यहोशू के नेतृत्व में उन्होंने उन जातियों से यह धरती ले ली थी जिन्हें हमारे पूर्वजों के सम्मुख परमेश्वर ने निकाल बाहर किया था। दाऊद के समय तक वह वही रहा। दाऊद ने परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद उठाया। उसने चाहा कि वह याकूब के लोगों के लिए एक मंदिर बनवा सके, किंतु वह सुलेमान ही था जिसने उसके लिए मंदिर बनवाया। कुछ भी हो, परम परमेश्वर तो हाथों से बनाए भवनों में नहीं रहता, जैसा कि नबी ने कहा है। प्रभु ने कहा, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और धरती चरण की चौकी बनी है, किस तरह का मेरा घर तुम बनाओगे? कहीं कोई जगह ऐसी है जहां विश्राम पाऊं? क्या यह सभी कुछ मेरे करों की रचना नहीं रही? हे बिना खतरे के मन और कान वाले हठीले लोगों, तुमने सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध किया है। तुम अपने पूर्वजों के जैसे ही हो। क्या कोई भी ऐसा नबी था जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने नहीं सताया? उन्होंने तो उन्हें भी मार डाला जिन्होंने बहुत पहले से ही उस धर्मी के आने की घोषणा कर दी थी, जिसे अब तुमने धोखा देकर पकड़वा दिया और मरवा डाला। तुम वही हो जिन्होंने स्वर्ग दूतों द्वारा दिए गए व्यवस्था के विधान को पा तो लिया, किंतु उस पर चले नहीं।
जब उन्होंने यह सुना तो वे क्रोध से आग बबूला हो उठे और उस पर दांत पीसने लगे, किंतु पवित्र आत्मा से भावित स्तिफनुस स्वर्ग की ओर देखता रहा। उसने देखा परमेश्वर की महिमा को और परमेश्वर के दाहिने खड़े यीशु को। सो उसने कहा,
देखो, मैं देख रहा हूँ कि स्वर्ग खुला हुआ है और मनुष्य का पुत्र परमेश्वर के दाहिने खड़ा है।
इस पर उन्होंने चिल्लाते हुए अपने कान बंद कर लिए और फिर वे सभी उस पर एक साथ झपट पड़े। वे उसे घसीटते हुए नगर से बाहर ले गए और उस पर पथराव करने लगे। तभी गवाहों ने अपने वस्त्र उतार कर शाउल नाम के एक युवक के चरणों में रख दिए। स्तिफनुस पर जब से उन्होंने पत्थर बरसाना प्रारंभ किया, वह यह कहते हुए प्रार्थना करता रहा,
हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को स्वीकार कर।
फिर वह घुटनों के बल गिर पड़ा और ऊंचे स्वर में चिल्लाया,
प्रभु इस पाप को उनके विरुद्ध मत ले।
इतना कहकर वह चिर निद्रा में सो गया। प्रेरितों के काम अध्याय 8। इस तरह शाऊल ने स्तिफनुस की हत्या का समर्थन किया। उसी दिन से यरूशलेम की कलीसिया पर घोर अत्याचार होने आरंभ हो गए। प्रेरितों को छोड़ वे सभी लोग यहूदिया और सामरिया के गांव में तितर बितर होकर फैल गए। कुछ भक्त जनों ने स्तिफनुस को दफना दिया और उसके लिए गहरा शोक मनाया। शाऊल ने कलीसिया को नष्ट करना आरंभ कर दिया। वह घर घर जाकर औरत और पुरुषों को घसीटते हुए जेल में डालने लगा। उधर तितर बितर हुए लोग हर कहीं जाकर सुसमाचार का संदेश देने लगे। फिलिप्पुस सामरिया नगर को चला गया और वहां लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। फिलिप्पुस के लोगों ने जब सुना और जिन अद्भुत चिन्हों को वह प्रकट किया करता था देखा, तो जिन बातों को वह बताया करता था उन पर उन्होंने गंभीरता के साथ ध्यान दिया। बहुत से लोगों में से जिनमें दुष्टात्माएं समाई थीं, वे ऊंचे स्वर में चिल्लाती हुई बाहर निकल आई थीं। बहुत से लकवे के रोगी और विकलांग अच्छे हो रहे थे। उस नगर में उल्लास छाया हुआ था। वहीं शमौन नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वह काफी समय से उस नगर में जादू टोना किया करता था और सामरिया के लोगों को आश्चर्य में डालता रहता था। वह महापुरुष होने का दावा किया करता था। छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग उसकी बात पर ध्यान देते और कहते,
यह व्यक्ति परमेश्वर की वही शक्ति है जो महान शक्ति कहलाती है,
क्योंकि उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने चमत्कारों के चक्कर में डाल रखा था, इसलिए वे उस पर ध्यान दिया करते थे। किंतु उन्होंने जब फिलिप्पुस पर विश्वास किया, क्योंकि उसने उन्हें परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार और यीशु मसीह का नाम सुनाया था, तो वे स्त्री और पुरुष दोनों ही बपतिस्मा लेने लगे और स्वयं शमौन ने भी उन पर विश्वास किया। और बपतिस्मा लेने के बाद फिलिप्पुस के साथ वह बड़ी निकटता से रहने लगा। उन महान चिन्हों और किए जा रहे अद्भुत कार्यों को जब उसने देखा तो वह दंग रह गया। उधर यरूशलेम में प्रेरितों ने जब यह सुना कि सामरिया के लोगों ने परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर लिया है, तो उन्होंने पतरस और योहन्ना को उनके पास भेजा। सो जब वे पहुंचे तो उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की कि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो, क्योंकि अभी तक पवित्र आत्मा किसी पर भी नहीं उतरा था। उन्हें बस प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा ही दिया गया। सो पतरस और योहन्ना ने उन पर अपने हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने भर से पवित्र आत्मा दे दिया गया, तो उनके सामने धन प्रस्तुत करते हुए वह बोला,
ये शक्ति मुझे दे दो ताकि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं उसे पवित्र आत्मा मिल जाए।
पतरस ने उससे कहा,
तेरा और तेरे धन का सत्यानाश हो, क्योंकि तूने यह सोचा कि तू धन से परमेश्वर के वरदान को मोल ले सकता है। इस विषय में ना तेरा कोई हिस्सा है और ना कोई साझा, क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख तेरा हृदय ठीक नहीं है। इसलिए अपनी इस दुष्टता से मन फिराव कर और प्रभु से प्रार्थना कर। हो सकता है तेरे मन में जो विचार था उस विचार के लिए तू क्षमा कर दिया जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तू कटुता से भरा है और पाप के चंगुल में फंसा है।
इस पर शमौन ने उत्तर दिया,
तुम प्रभु से मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि तुमने जो कुछ कहा है उसमें से कोई भी बात मुझ पर ना घटे।
फिर प्रेरित अपनी साक्षी देकर और प्रभु का वचन सुनाकर रास्ते के बहुत से सामरी गांवों में सुसमाचार का उपदेश करते हुए यरूशलेम लौट आए। प्रभु के एक दूत ने फिलिप्पुस को कहते हुए बताया,
तैयार हो और दक्षिण दिशा में उस राह पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाती है।
यह एक सुनसान मार्ग है। सो वह तैयार हुआ और चल पड़ा। वहीं एक कूश का खोजा था। वह कूश की रानी कंदाके का एक अधिकारी था जो उसके समूचे कोष का कोषपाल था। वह आराधना के लिए यरूशलेम गया था। लौटते हुए वह अपने रथ में बैठा भविष्यवक्ता यशायाह का ग्रंथ पढ़ रहा था। तभी फिलिप्पुस को आत्मा से प्रेरणा मिली,
उस रथ के पास जा और वहीं ठहर।
फिलिप्पुस जब उस रथ के पास दौड़कर गया तो उसने उसे यशायाह को पढ़ते सुना। सो वह बोला,
क्या जिसे तू पढ़ रहा है उसे समझता है?
उसने कहा,
मैं भला तब तक कैसे समझ सकता हूँ जब तक कोई मुझे इसकी व्याख्या नहीं करे।
फिर उसने फिलिप्पुस को रथ पर अपने साथ बैठने को बुलाया। शास्त्र के जिस अंश को वह पढ़ रहा था वह था,
उसे वध होने वाली भेड़ के समान ले जाया जा रहा था, वह तो उस मेमने के समान चुप था जो अपनी ऊन काटने वाले के समक्ष चुप रहता है, ठीक वैसे ही उसने अपना मुंह खोला नहीं। ऐसी दिन दशा में उसको न्याय से वंचित किया गया, उसकी पीढ़ी का कौन वर्णन करेगा, क्योंकि धरती से उसका जीवन तो ले लिया था।
उस खोजे ने फिलिप्पुस से कहा,
अनुग्रह करके मुझे बता कि भविष्यवक्ता यह किसके बारे में कह रहा है, अपने बारे में या किसी और के?
फिर फिलिप्पुस ने कहना शुरू किया और इस शास्त्र से लेकर यीशु के सुसमाचार तक सब उसे कह सुनाया। मार्ग में आगे बढ़ते हुए वे कहीं पानी के पास पहुँचे। फिर उस खोजे ने कहा,
देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या बाधा है?
तब उसने रथ को रोकने की आज्ञा दी। फिर फिलिप्पुस और वह खोजा दोनों ही पानी में उतर गए और फिलिप्पुस ने उसे बपतिस्मा दिया। और फिर जब वे पानी से बाहर निकले तो फिलिप्पुस को प्रभु की आत्मा कहीं उठा ले गई और उस खोजे ने फिर उसे कभी नहीं देखा। उधर खोजा आनंद मनाता हुआ अपने मार्ग पर आगे चला गया। उधर फिलिप्पुस ने अपने आप को अशदोद में पाया और जब तक वह कैसरिया नहीं पहुंचा तब तक सभी नगरों में सुसमाचार का प्रचार करते हुए यात्रा करता रहा।
प्रेरितों के काम अध्याय 9।
शाऊल अभी प्रभु के अनुयायियों को मार डालने की धमकियां दिया करता था। वह प्रमुख याजक के पास गया और उसने दमिश्क के आराधनालयों के नाम मांगकर अधिकार पत्र ले लिया, जिससे उसे वहां यदि कोई इस पंथ का अनुयायी मिले, फिर चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष, तो वह उन्हें बंदी बना सके और फिर वापस यरूशलेम ले आए। सो जब चलते चलते वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो अचानक उसके चारों ओर आकाश से एक प्रकाश कौंध गया और वह धरती पर जा पड़ा। उसने एक आवाज सुनी जो उससे कह रही थी,
शाऊल, अरे ओ शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है?
शाऊल ने पूछा,
प्रभु तू कौन है?
वह बोला,
मैं यीशु हूँ जिसे तू सता रहा है, पर तू अब खड़ा हो और नगर में जा, वहां तुझे बता दिया जाएगा कि तुझे क्या करना चाहिए।
जो पुरुष उसके साथ यात्रा कर रहे थे अवाक खड़े थे। उन्होंने आवाज तो सुनी किंतु किसी को भी देखा नहीं। फिर शाऊल धरती पर से खड़ा हुआ, किंतु जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह कुछ भी देख नहीं पाया। सो वे उसे हाथ पकड़कर दमिश्क ले गए। 3 दिन तक वह न तो कुछ देख पाया और न ही उसने कुछ खाया या पिया। दमिश्क में हनन्याह नाम का एक शिष्य था। प्रभु ने दर्शन देकर उससे कहा,
हनन्या?
सो वह बोला,
प्रभु मैं यह रहा।
प्रभु ने उससे कहा,
खड़ा हो और सीधी कहलाने वाली गली में जा और वहां यहूदा के घर में जाकर तरसुस निवासी शाऊल नाम के एक व्यक्ति के बारे में पूछताछ कर, क्योंकि वह प्रार्थना कर रहा है। उसने एक दर्शन में देखा है कि हनन्याह नाम के एक व्यक्ति ने घर में आकर उस पर हाथ रखे हैं ताकि वह फिर से देख सके।
हनन्याह ने उत्तर दिया,
प्रभु मैंने इस व्यक्ति के बारे में बहुत से लोगों से सुनी है। यरूशलेम में तेरे संतों के साथ इसने जो बुरी बातें की है वे सब मैंने सुना है, और यहाँ भी यह प्रमुख याजकों से तेरे नाम में सभी विश्वास रखने वालों को बंदी बनाने का अधिकार लेकर आया है।
किंतु प्रभु ने उससे कहा,
तू जा, क्योंकि इस व्यक्ति को विधर्मियों, राजाओं और इसराइल के लोगों के सामने मेरा नाम लेने के लिए एक साधन के रूप में मैंने चुना है। मैं स्वयं उसे वह सब कुछ बताऊंगा जो उसे मेरे नाम के लिए सहना होगा।
सो हनन्याह चल पड़ा और उस घर के भीतर पहुंचा और शाऊल पर उसने अपने हाथ रख दिए और कहा,
भाई शाऊल, प्रभु यीशु ने मुझे भेजा है जो तेरे मार्ग में तेरे सम्मुख प्रकट हुआ था, ताकि तू फिर से देख सके और पवित्र आत्मा से भावित हो जाए।
फिर तुरंत छिलकों जैसी कोई वस्तु उसकी आंखों से ढलकी और उसे फिर दिखाई देने लगा। वह खड़ा हुआ और उसने बपतिस्मा लिया। फिर थोड़ा भोजन लेने के बाद उसने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। वह दमिश्क में शिष्यों के साथ कुछ समय ठहरा। फिर वह तुरंत यहूदी आराधनालयों में जाकर यीशु का प्रचार करने लगा। वह बोला,
यह यीशु परमेश्वर का पुत्र है।
जिस किसी ने भी उसे सुना चकित रह गया और बोला,
क्या यह वही नहीं है जो यरूशलेम में यीशु के नाम में विश्वास रखने वालों को नष्ट करने का यत्न किया करता था? और क्या यह उन्हें यहाँ पकड़ने और प्रमुख याजकों के सामने ले जाने नहीं आया था?
किंतु शाऊल अधिक से अधिक शक्तिशाली होता गया और दमिश्क में रहने वाले यहूदियों को यह प्रमाणित करते हुए कि यह यीशु ही मसीह है पराजित करने लगा। बहुत दिन बीत जाने के बाद यहूदियों ने उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, किंतु उनकी योजनाओं का शाऊल को पता चल गया। वे नगर द्वारों पर रात दिन घात लगाए रहते थे ताकि उसे मार डालें, किंतु उसके शिष्य रात में उसे उठा ले गए और टोकरी में बैठाकर नगर की चार दीवारी से लटकाकर उसे नीचे उतार दिया। फिर जब वह यरूशलेम पहुंचा तो वह शिष्यों के साथ मिलने का जतन करने लगा, किंतु वे तो सभी उससे डरते थे। उन्हें यह विश्वास नहीं था कि वह भी एक शिष्य है। किंतु बरनबास उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले गया और उसने उन्हें बताया कि शाऊल ने प्रभु को मार्ग में किस प्रकार देखा और प्रभु ने उससे कैसी बातें की और दमिश्क में किस प्रकार उसने निर्भयता से यीशु के नाम का प्रचार किया। फिर शाऊल उनके साथ यरूशलेम में स्वतंत्रता पूर्वक आते जाते रहने लगा। वह निर्भीकता के साथ प्रभु के नाम का प्रवचन किया करता था। वह यूनानी भाषा भाषी यहूदियों के साथ वाद विवाद और चर्चाएं करता, किंतु वे तो उसे मार डालना चाहते थे। किंतु जब बंधुओं को इस बात का पता चला तो वे उसे कैसरिया ले गए और फिर उसे तरसुस पहुंचा दिया। इस प्रकार समूचे यहूदिया, गलील और सामरिया के कलीसिया का वह समय शांति से बीता। वह कलीसिया और अधिक शक्तिशाली होने लगी, क्योंकि वह प्रभु से डरकर अपना जीवन व्यतीत करती थी और पवित्र आत्मा ने उसे और अधिक प्रोत्साहित किया था, सो उसकी संख्या बढ़ने लगी। फिर उस समूचे क्षेत्र में घूमता फिरता पतरस लिद्दा के संतों से मिलने पहुंचा। वहां उसे अनियास नाम का एक व्यक्ति मिला जो 8 साल से बिस्तर में पड़ा था। उसे लकवा मार गया था पतरस ने उससे कहा,
अनियास, यीशु मसीह तुझे स्वस्थ करता है, खड़ा हो और अपना बिस्तर ठीक कर।
सो वह तुरंत खड़ा हो गया। फिर लिद्दा और शारोन में रहने वाले सभी लोगों ने उसे देखा और वे प्रभु की ओर मुड़ गए। याफा में तबीता नाम की एक शिष्या रहा करती थी, जिसका यूनानी अनुवाद है दोरकास अर्थात हिरणी। वह सदा अच्छे अच्छे काम करती और गरीबों को दान देती। उन्हीं दिनों वह बीमार हुई और मर गई। उन्होंने उसके शव को स्नान करा के सीढ़ियों के ऊपर कमरे में रख दिया। लिद्दा याफा के पास ही था, सो शिष्यों ने जब यह सुना कि पतरस लिद्दा में है, तो उन्होंने उसके पास दो व्यक्ति भेजे कि वे उससे विनती करें,
अनुग्रह करके जल्दी से जल्दी हमारे पास आ जा।
सो पतरस तैयार होकर उनके साथ चल दिया। जब पतरस वहां पहुंचा, तो वे उसे सीढ़ियों के ऊपर कमरे में ले गए। वहां सभी विधवाएं विलाप करते हुए और उन कुर्तियों और दूसरे वस्त्रों को, जिन्हें दोरकास ने जब वह उनके साथ थी बनाया था, दिखाते हुए उसके चारों ओर खड़ी हो गई। पतरस ने हर किसी को बाहर भेज दिया और घुटनों के बल झुककर उसने प्रार्थना की। फिर शव की ओर मुड़ते हुए उसने कहा,
तबीता खड़ी हो जा।
उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखते हुए वह उठ बैठी। उसे अपना हाथ देकर पतरस ने खड़ा किया और फिर संतों और विधवाओं को बुलाकर उन्हें उसे जीवित सौंप दिया। समूचे याफा में हर किसी को इस बात का पता चल गया और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। फिर याफा में शमौन नाम के एक चर्मकार के यहाँ पतरस बहुत दिनों तक ठहरा। प्रेरितों के काम अध्याय 10। कैसरिया में कुर्नेलियुस नाम का एक व्यक्ति था। वह सेना के उस दल का नायक था जिसे इतालवी कहा जाता था। वह परमेश्वर से डरने वाला भक्त था और उसका परिवार भी वैसा ही था। वह गरीब लोगों की सहायता के लिए उदारतापूर्वक दान दिया करता था और सदा ही परमेश्वर की प्रार्थना करता रहता था। दिन के नवे पहर के आसपास उसने एक दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास आया है और उससे कह रहा है,
कुर्नेलियुस।
सो कुर्नेलियुस डरते हुए स्वर्गदूत की ओर देखते हुए बोला,
हे प्रभु, यह क्या है?
स्वर्गदूत ने उससे कहा,
तेरी प्रार्थनाएं और दीन दुखियों को दिया हुआ तेरा दान एक स्मारक के रूप में तुझे याद दिलाने के लिए परमेश्वर के पास पहुँचे हैं। सो अब कुछ व्यक्तियों को याफा भेज और शिमोन नाम के एक व्यक्ति को, जो पतरस भी कहलाता है, यहाँ बुलवा ले। वह शिमोन नाम के एक चर्मकार के साथ रह रहा है। उसका घर सागर के किनारे है।
वह स्वर्गदूत जो उससे बात कर रहा था, जब चला गया तो उसने अपने दो सेवकों और अपने निजी सहायकों में से एक भक्त सिपाही को बुलाया और जो कुछ घटित हुआ था उन्हें सब कुछ बताकर याफा भेज दिया। अगले दिन जब वे चलते चलते नगर के निकट पहुंचने ही वाले थे, पतरस दोपहर के समय प्रार्थना करने को छत पर चढ़ा। उसे भूख लगी, सो वह कुछ खाना चाहता था। वे जब भोजन तैयार कर ही रहे थे तो उसकी समाधि लग गई और उसने देखा कि आकाश खुल गया है और एक बड़ी चादर जैसी कोई वस्तु नीचे उतर रही है। उसे चारों कोनों से पकड़कर धरती पर उतारा जा रहा है। उस पर हर एक प्रकार के पशु, धरती के रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी थे। फिर एक स्वर ने उससे कहा,
पतरस उठ, मार और खा।
पतरस ने कहा,
प्रभु, निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मैंने कभी भी किसी तुच्छ या समय के अनुसार अपवित्र आहार को नहीं लिया है।
इस पर उन्हें दूसरी बार फिर वाणी सुनाई दी,
किसी भी वस्तु को जिसे परमेश्वर ने पवित्र बनाया है तुच्छ मत कहना।
तीन बार ऐसा ही हुआ और वह वस्तु फिर तुरंत आकाश में वापस उठा ली गई। पतरस ने जिस दृश्य को दर्शन में देखा था उस पर वह अभी चक्कर में ही पड़ा हुआ था कि कुरनेलियुस के भेजे हुए लोग दरवाजे पर खड़े पूछ रहे थे कि शमौन का घर कहाँ है। उन्होंने बाहर बुलाते हुए पूछा,
क्या पतरस कहलाने वाला शमौन अतिथि के रूप में यही ठहरा है?
पतरस अभी उस दर्शन के बारे में सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा,
सुन, तीन व्यक्ति तुझे ढूंढ रहे हैं, सो खड़ा हो और नीचे उतर, बेझिझक उनके साथ चला जा, क्योंकि उन्हें मैंने ही भेजा है।
इस प्रकार पतरस नीचे उतर आया और उन लोगों से बोला,
मैं वही हूँ जिसे तुम खोज रहे हो, तुम क्यों आए हो?
वे बोले,
हमें सेनानायक कुरनेलियुस ने भेजा है, वह परमेश्वर से डरने वाला नेक पुरुष है, यहूदी लोगों में उसका बहुत सम्मान है, उससे पवित्र स्वर्गदूत ने तुझे अपने घर बुलाने का निमंत्रण देने को और जो कुछ तू कहे उसे सुनने को कहा है।
इस पर पतरस ने उन्हें भीतर बुला लिया और ठहरने को स्थान दिया। फिर अगले दिन तैयार होकर वह उनके साथ चला गया और याफा के निवासी कुछ अन्य बंधु भी उसके साथ हो लिए। अगले ही दिन वह कैसरिया जा पहुंचा। वहां अपने संबंधियों और निकट मित्रों को बुलाकर कुरनेलियुस उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। पतरस जब भीतर पहुंचा तो कुरनेलियुस से उसकी भेंट हुई। कुरनेलियुस ने उसके चरणों पर गिरते हुए उसको दंडवत प्रणाम किया, किंतु उसे उठाते हुए पतरस बोला,
खड़ा हो, मैं तो स्वयं मात्र एक मनुष्य हूँ।
फिर उसके साथ बात करते करते वह भीतर चला गया और वहां उसने बहुत से लोगों को एकत्र पाया। उसने उनसे कहा,
तुम जानते हो कि एक यहूदी के लिए किसी दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ कोई संबंध रखना या उसके यहाँ जाना विधान के विरुद्ध है, किंतु फिर भी परमेश्वर ने मुझे दर्शाया है कि मैं किसी भी व्यक्ति को अशुद्ध या पवित्र ना कहूं। इसलिए मुझे जब बुलाया गया तो मैं बिना किसी आपत्ति के आ गया। इसलिए मैं तुमसे पूछता हूं कि तुमने मुझे किस लिए बुलाया है?
इस पर कुरनेलियुस ने कहा,
चार दिन पहले इसी समय दिन के 9:03 मैं अपने घर में प्रार्थना कर रहा था, अचानक चमचमाते वस्त्रों में एक व्यक्ति मेरे सामने आकर खड़ा हुआ और कहा, कुरनेलियुस, तेरी विनती सुन ली गई है और दीन दुखियों को दिए गए तेरे दान परमेश्वर के सामने याद किए गए हैं, इसलिए याफा भेजकर पतरस कहलाने वाले शमौन को बुलवा भेज, वो सागर किनारे चर्मकार शमौन के घर ठहरा हुआ है, इसलिए मैंने तुरंत तुझे बुलवा भेजा और तूने यहाँ आने की कृपा करके बहुत अच्छा किया। सो अब प्रभु ने जो कुछ आदेश तुझे दिए हैं उस सब कुछ को सुनने के लिए हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने उपस्थित हैं।
फिर पतरस ने अपना मुंह खोला, उसने कहा,
अब सचमुच मैं समझ गया हूँ कि परमेश्वर कोई भेदभाव नहीं करता, बल्कि हर जाति का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उससे डरता है और नेक काम करता है वह उसे स्वीकार करता है। यही है वह संदेश जिसे उसने यीशु मसीह के द्वारा शांति के सुसमाचार का उपदेश देते हुए इज़राइल के लोगों को दिया था। वह सभी का प्रभु है। तुम उस महान घटना को जानते हो जो समूचे यहूदिया में घटी थी, गलील में प्रारंभ होकर यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा दिए जाने के बाद से जिसका प्रचार किया गया था। तुम नासरी यीशु के विषय में जानते हो कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और शक्ति से उसका अभिषेक कैसे किया था और उत्तम कार्य करते हुए तथा उन सबको जो शैतान के बस में थे चंगा करते हुए चार ओर वह कैसे घूमता रहा था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और हम उन सब बातों के साक्षी हैं जिन्हें उसने यहूदियों के प्रदेश और यरूशलेम में किया था, उन्होंने उसे ही एक पेड़ पर लटकाकर मार डाला, किंतु परमेश्वर ने तीसरे दिन उसे फिर से जीवित कर दिया और उसे प्रकट होने को प्रेरित किया। सब लोगों के सामने नहीं, वरन बस उन साक्षियों के सामने जो परमेश्वर के द्वारा पहले से चुन लिए गए थे, अर्थात हमारे सामने, जिन्होंने उसके मरे हुए में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया और पिया। उसी ने हमें आदेश दिया है कि हम लोगों को उपदेश दें और प्रमाणित करें कि यह वही है जो परमेश्वर के द्वारा जीवितों और मरे हुओं का न्यायकर्ता बनने को नियुक्त किया गया है। सभी भविष्यवक्ताओं ने उसके विषय में साक्षी दी है कि उसमें विश्वास करने वाला हर व्यक्ति उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा पाता है।
पतरस अभी ये बातें कह ही रहा था कि उन सब पर पवित्र आत्मा उतर आया जिन्होंने सुसंदेश सुना था, क्योंकि पवित्र आत्मा का वरदान गैर यहूदियों पर भी उंडेला जा रहा था। सो पतरस के साथ आए यहूदी विश्वासी आश्चर्य में डूब गए। वे उन्हें नाना भाषाएं बोलते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए सुन रहे थे। तब पतरस बोला,
क्या कोई इन लोगों को बपतिस्मा देने के लिए जल सुलभ कराने को मना कर सकता है? इन्हें भी वैसे ही पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ है जैसे हमें।
इस प्रकार उसने यीशु मसीह के नाम में उन्हें बपतिस्मा देने की आज्ञा दी। फिर उन्होंने पतरस से अनुरोध किया कि वह कुछ दिन उनके साथ ठहरे। प्रेरितों के काम अध्याय 11। समूचे यहूदिया में बंधुओं और प्रेरितों ने सुना कि प्रभु का वचन गैर यहूदियों ने भी ग्रहण कर लिया है। सो जब पतरस यरूशलेम पहुंचा तो उन्होंने जो खतना के पक्ष में थे उसकी आलोचना की। वे बोले,
तू खतना रहित लोगों के घर में गया है और तूने उनके साथ खाना खाया है।
इस पर पतरस वास्तव में जो घटा था उसे सुनाने समझाने लगा।
मैंने याफा नगर में प्रार्थना करते हुए समाधि में एक दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक बड़ी चादर जैसी कोई वस्तु नीचे उतर रही है। उसे चारों कोनों से पकड़कर आकाश से धरती पर उतारा जा रहा है। फिर वह उतरकर मेरे पास आ गई। मैंने उसको ध्यान से देखा। मैंने देखा कि उसमें धरती के चौपाए, जीव जंतु, जंगली पशु, रेंगने वाले जीव और आकाश के पक्षी थे। फिर मैंने एक आवाज सुनी जो मुझसे कह रही थी, पतरस उठ, मार और खा। किंतु मैंने कहा, प्रभु निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मैंने कभी भी किसी तुच्छ या समय के अनुसार किसी अपवित्र आहार को नहीं लिया है। आकाश से दूसरी बार उस स्वर ने फिर कहा, जिसे परमेश्वर ने पवित्र बनाया है उसे तू अपवित्र मत समझ। तीन बार ऐसा ही हुआ, फिर वह सब आकाश में वापस उठा लिया गया। उसी समय जहां मैं ठहरा हुआ था उस घर में तीन व्यक्ति आ पहुंचे। उन्हें मेरे पास कैसरिया से भेजा गया था। आत्मा ने मुझसे उनके साथ बेझिझक चले जाने को कहा। ये छह बंधु भी मेरे साथ गए और हमने उस व्यक्ति के घर में प्रवेश किया। उसने हमें बताया कि एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़े उसने कैसे देखा था, जो कह रहा था, याफा भेजकर पतरस कहलाने वाले शमौन को बुलवा ले, वह तुझे वचन सुनाएगा जिससे तेरा और तेरे परिवार का उद्धार होगा। जब मैंने प्रवचन आरंभ किया तो पवित्र आत्मा उन पर उतर आया, ठीक वैसे ही जैसे प्रारंभ में हम पर उतरा था। फिर मुझे प्रभु का कहा यह वचन याद हो आया, योहन्ना जल से बपतिस्मा देता था, किंतु तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया जाएगा। इस प्रकार यदि परमेश्वर ने उन्हें भी वही वरदान दिया जिसे उसने जब हमने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया था तब हमें दिया था, तो विरोध करने वाला मैं कौन होता था?
विश्वासियों ने जब यह सुना तो उन्होंने प्रश्न करना बंद कर दिया। वे परमेश्वर की महिमा करते हुए कहने लगे,
अच्छा तो परमेश्वर ने विधर्मियों तक को मन फिराव का वह अवसर दिया है जो जीवन की ओर ले जाता है।
वे लोग जो स्तिफनुस के समय में दी जा रही यातनाओं के कारण तितर बितर हो गए थे, दूर दूर तक फीनिक, साइप्रस और अंताकिया तक जा पहुँचे। ये यहूदियों को छोड़ किसी भी और को सुसमाचार नहीं सुनाते थे। इन्हीं विश्वासियों में से कुछ साइप्रस और कुरैन के थे। सो जब वे अंताकिया आए तो यूनानियों को भी प्रवचन देते हुए प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे। प्रभु की शक्ति उनके साथ थी, सो एक विशाल जन समुदाय विश्वास धारण करके प्रभु की ओर मुड़ गया। इसका समाचार जब यरूशलेम में कलीसिया के कानों तक पहुंचा, तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया जाने को भेजा। जब बरनबास ने वहां पहुंचकर प्रभु के अनुग्रह को सकारत होते देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उन सभी को प्रभु के प्रति भक्तिपूर्ण हृदय से विश्वासी बने रहने को उत्साहित किया, क्योंकि वह पवित्र आत्मा और विश्वास से पूर्ण एक उत्तम पुरुष था। फिर प्रभु के साथ एक विशाल जनसमूह और जुड़ गया। बरनबास शाऊल को खोजने तरसुस को चला गया। फिर वह उसे ढूंढकर अंताकिया ले आया। सारे साल वे कलीसिया से मिलते जुलते और विशाल जनसमूह को उपदेश देते रहे। अंताकिया में सबसे पहले इन्हीं शिष्यों को मसीही कहा गया। इसी समय यरूशलेम से कुछ नबी अंताकिया आए। उनमें से अगबुस नाम के एक भविष्यवक्ता ने खड़े होकर पवित्र आत्मा के द्वारा यह भविष्यवाणी की, सारी दुनिया में एक भयानक अकाल पड़ने वाला है। क्लौदियुस के काल में यह अकाल पड़ा था। तब हर शिष्य ने अपनी शक्ति के अनुसार यहूदिया में रहने वाले बंधुओं की सहायता के लिए कुछ भेजने का निश्चय किया था। सो उन्होंने ऐसा ही किया और उन्होंने बरनबास और शाऊल के हाथों अपने बुजुर्गों के पास अपने उपहार भेजे। प्रेरितों के काम अध्याय 12। उसी समय के आसपास राजा हेरोदेस ने कलीसिया के कुछ सदस्यों को सताना प्रारंभ कर दिया। उसने योहन्ना के भाई याकूब की तलवार से हत्या करवा दी। उसने जब यह देखा कि इस बात से यहूदी प्रसन्न होते हैं, तो उसने पतरस को भी बंदी बनाने के लिए हाथ बढ़ाया। ये बिना खमीर की रोटी के उत्सव के दिनों की बात है। हेरोदेस ने पतरस को पकड़कर जेल में डाल दिया। उसे चार चार सैनिकों की चार पंक्तियों के पहरे के हवाले कर दिया गया। प्रयोजन यह था कि उस पर मुकदमा चलाने के लिए फसह पर्व के बाद उसे लोगों के सामने बाहर लाया जाए। सो पतरस को जेल में रोके रखा गया। उधर कलीसिया हृदय से उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करती रही। जब हेरोदेस मुकदमा चलाने के लिए उसे बाहर लाने को था, उस रात पतरस दो सैनिकों के बीच सोया हुआ था। वह दो जंजीरों से बंधा था और द्वार पर पहरेदार जेल की रखवाली कर रहे थे। अचानक प्रभु का एक स्वर्गदूत वहां आकर खड़ा हुआ। जेल की कोठरी प्रकाश से जगमग हो उठी। उसने पतरस की बगल थपथपाई और उसे जगाते हुए कहा,
जल्दी खड़ा हो।
जंजीरें उसके हाथों से खुलकर गिर पड़ी। तभी स्वर्गदूत ने उसे आदेश दिया,
तैयार हो और अपनी चप्पल पहन ले।
सो पतरस ने वैसा ही किया। स्वर्गदूत ने उससे फिर कहा,
अपना चोगा पहन ले और मेरे पीछे चला आ।
फिर उसके पीछे पीछे पतरस बाहर निकल आया। वह समझ नहीं पाया कि स्वर्गदूत जो कुछ कर रहा था वह यथार्थ था। उसने सोचा कि वह कोई दर्शन देख रहा है। पहले और दूसरे पहरेदार को छोड़कर आगे बढ़ते हुए वे लोहे के उस फाटक पर आ पहुंचे जो नगर की ओर जाता था। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे बाहर निकल गए। वे अभी गली पार ही गए थे कि वह स्वर्गदूत अचानक उसे छोड़ गया। फिर पतरस को जैसे होश आया, वह बोला,
अब मेरी समझ में आया कि यह वास्तव में सच है कि प्रभु ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर हेरोदेस के पंजे से मुझे छुड़ाया है। यहूदी लोग मुझ पर जो कुछ घटने की सोच रहे थे, उससे उसी ने मुझे बचाया है।
जब उसने यह समझ लिया तो वह यूहन्ना की माता मरियम के घर चला गया। यूहन्ना, जो मरकुस भी कहलाता है, वहां बहुत से लोग एक साथ प्रार्थना कर रहे थे। पतरस ने द्वार को बाहर से खटखटाया। उसे देखने रूदे नाम की एक दासी वहां आई। पतरस की आवाज को पहचान कर आनंद के मारे उसके लिए द्वार खोले बिना ही वह उल्टे भीतर दौड़ गई और उसने बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। वे उससे बोले,
तू पागल हो गई है।
किंतु वह बलपूर्वक कहती रही कि यह ऐसा ही है। इस पर उन्होंने कहा,
वह उसका स्वर्गदूत होगा।
उधर पतरस द्वार खटखटाता ही रहा। फिर उन्होंने जब द्वार खोला और उसे देखा तो वे अचरज में पड़ गए। उन्हें हाथ से चुप रहने का संकेत करते हुए उसने खोलकर बताया कि प्रभु ने उसे जेल से कैसे बाहर निकाला है। उसने कहा,
याकूब तथा अन्य बंधुओं को इस विषय में बता देना।
और तब वह उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान को चला गया। जब भोर हुई तो पहरेदारों में बड़ी खलबली फैल गई। वे अचरज में पड़े सोच रहे थे कि पतरस के साथ क्या हुआ होगा। इसके बाद हेरोदेस जब उसकी खोजबीन कर चुका और वह उसे नहीं मिला तो उसने पहरेदारों से पूछताछ की और उन्हें मार डालने की आज्ञा दी। हेरोदेस फिर यहूदिया से जाकर कैसरिया में रहने लगा। वहां उसने कुछ समय बिताया। वह सूर और सैदा के लोगों से बहुत क्रोधित रहता था। वे एक समूह बनाकर उससे मिलने आए। राजा के निजी सेवक बलास्तुस को मनाकर उन्होंने हेरोदेस से शांति की प्रार्थना की, क्योंकि उनके देश को राजा के देश से ही खाने को मिलता था। एक निश्चित दिन हेरोदेस अपनी राजसी वेशभूषा पहनकर अपने सिंहासन पर बैठा और लोगों को भाषण देने लगा। लोग चिल्लाए,
यह तो किसी देवता की वाणी है, मनुष्य की नहीं।
क्योंकि हेरोदेस ने परमेश्वर को महिमा प्रदान नहीं की थी, इसलिए तत्काल प्रभु के एक स्वर्गदूत ने उसे बीमार कर दिया और उसमें कीड़े पड़ गए जो उसे खाने लगे और वह मर गया। किंतु परमेश्वर का वचन प्रचार पाता रहा और फैलता रहा। बरनबास और शाऊल यरूशलेम में अपना काम पूरा करके मरकुस कहलाने वाले यूहन्ना को भी साथ लेकर अंताकिया लौट आए। प्रेरितों के काम अध्याय 13। अंताकिया के कलीसिया में कुछ नबी और बरनबास, काला कहलाने वाला शमौन, कुरेन का लुकियुस, देश के चौथाई भाग के राजा हेरोदेस के साथ पलित पोषित मनाहेम और शाऊल जैसे कुछ शिक्षक थे। वे जब उपवास करते हुए प्रभु की उपासना में लगे हुए थे तभी पवित्र आत्मा ने कहा,
बरनबास और शाऊल को जिस काम के लिए मैंने बुलाया है उसे करने के लिए मेरे निमित्त उन्हें अलग कर दो।
सो जब शिक्षक और नबी अपना उपवास और प्रार्थना पूरी कर चुके तो उन्होंने बरनबास और शाऊल पर अपने हाथ रखे और उन्हें विदा कर दिया। पवित्र आत्मा के द्वारा भेजे हुए वे सिलुकिया गए, जहां से जहाज में बैठकर वे साइप्रस पहुंचे। फिर जब वे सलमीस पहुंचे तो उन्होंने यहूदियों के आराधनालयों में परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। यूहन्ना सहायक के रूप में उनके साथ था। उस समूचे द्वीप की यात्रा करते हुए वे पाफुस तक जा पहुंचे। वहां उन्हें एक जादूगर मिला। वह झूठा नबी था। उस यहूदी का नाम था बार ईशु। वह एक अत्यंत बुद्धिमान पुरुष था। वह राज्यपाल सिरगियुस पौलुस का सेवक था, जिसने परमेश्वर का वचन फिर सुनने के लिए बरनबास और शाऊल को बुलाया था। किंतु इलीमास जादूगर ने उनका विरोध किया। यह बार ईशु का अनुवादित नाम है। उसने नगरपति के विश्वास को डिगाने का जतन किया। फिर शाऊल ने, जिसे पौलुस भी कहा जाता था, पवित्र आत्मा से अभिभूत होकर इलीमास पर पैनी दृष्टि डालते हुए कहा,
सभी प्रकार के छलों और धुरताओं से भरे और शैतान के बेटे, तू हर नेकी का शत्रु है। क्या तू प्रभु के सीधे सच्चे मार्ग को तोड़ना मरोड़ना नहीं छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर आ पड़ा है। तू अंधा हो जाएगा और कुछ समय के लिए सूर्य तक को नहीं देख पाएगा।
तुरंत एक धुंध और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा कि कोई उसका हाथ पकड़कर उसे चलाए। सो नगरपति ने जो कुछ घटा था जब उसे देखा तो उसने विश्वास धारण किया। वह प्रभु संबंधी उपदेशों से बहुत चकित हुआ। फिर पौलुस और उसके साथी पाफुस से नाव के द्वारा पंफूलिया के पिरगा में आ गए, किंतु यूहन्ना उन्हें वहीं छोड़कर यरूशलेम लौट आया। उधर वे अपनी यात्रा पर बढ़ते हुए पिरगा से पिसिदिया के अंताकिया में आ पहुँचे। फिर सबके दिन यहूदी आराधनालय में जाकर बैठ गए। व्यवस्था के विधान और नबियों के ग्रंथों का पाठ कर चुकने के बाद यहूदी प्रार्थना सभागार के अधिकारियों ने उनके पास यह संदेश कहला भेजा।
हे भाइयों, लोगों को शिक्षा देने के लिए तुम्हारे पास कहने को कोई और वचन है तो उसे सुनाओ।
इस पर पौलुस खड़ा हुआ और अपने हाथ हिलाते हुए बोलने लगा,
हे इसराइल के लोगों और परमेश्वर से डरने वाले गैर यहूदियों, सुनो। इन इसराइल के लोगों के परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों को चुना था और जब हमारे लोग मिस्र में ठहरे हुए थे उसने उन्हें महान बनाया था और अपनी महान शक्ति से ही वह उनको उस धरती से बाहर निकाल लाया था और लगभग 40 वर्ष तक वह जंगल में उनके साथ रहा और कनान देश की 7 जातियों को नष्ट करके उसने वह धरती इसराइल के लोगों को उत्तराधिकार के रूप में दे दी। इस सब कुछ में कोई लगभग 450 वर्ष लगे। इसके बाद शमूएल नबी के समय तक उसने उन्हें अनेक न्यायकर्ता दिए। फिर उन्होंने एक राजा की मांग की, सो परमेश्वर ने बिन्यामीन के गोत्र के एक व्यक्ति किश के बेटे शाऊल को 40 साल के लिए उन्हें दे दिया। फिर शाऊल को हटाकर उसने उनका राजा दाऊद को बनाया, जिसके विषय में उसने यह साक्षी दी थी, मैंने यिशै के बेटे दाऊद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पाया है जो मेरे मन के अनुकूल है। जो कुछ मैं उससे कराना चाहता हूँ वह उस सब कुछ को करेगा। इस ही मनुष्य के एक वंशज को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर इसराइल में उद्धारकर्ता यीशु के रूप में ला चुका है। उसके आने से पहले यूहन्ना इसराइल के सभी लोगों में मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता रहा है। यूहन्ना जब अपने काम को पूरा करने को था तो उसने कहा था, तुम मुझे जो समझते हो मैं वह नहीं हूँ, किंतु एक ऐसा है जो मेरे बाद आ रहा है, मैं जिसकी जूतियों के बंद खोलने के लायक भी नहीं हूँ। भाइयों, इब्राहिम की संतानों और परमेश्वर के उपासक गैर यहूदियों, उद्धार का यह सुसंदेश हमारे लिए ही भेजा गया है। यरूशलेम में रहने वालों और उनके शासकों ने यीशु को नहीं पहचाना और उसे दोषी ठहरा दिया। इस तरह उन्होंने नबियों के उन वचनों को ही पूरा किया जिनका हर शब्द के दिन पाठ किया जाता है, और यद्यपि उन्हें उसे मृत्यु दंड देने का कोई आधार नहीं मिला तो भी उन्होंने पिलातुस से उसे मरवा डालने की मांग की। उसके विषय में जो कुछ लिखा था, जब वे उस सब कुछ को पूरा कर चुके तो उन्होंने उसे क्रूस पर से नीचे उतार लिया और एक कब्र में रख दिया, किंतु परमेश्वर ने उसे मरने के बाद फिर से जीवित कर दिया। और फिर जो लोग गलील से यरूशलेम तक उसके साथ रहे थे वह उनके सामने कई दिनों तक प्रकट होता रहा। ये अब लोगों के लिए उसकी साक्षी है। हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में सुसमाचार सुना रहे हैं जो हमारे पूर्वजों के साथ की गई थी। यीशु को मर जाने के बाद पुनर्जीवित करके उनकी संतानों के लिए परमेश्वर ने उसी प्रतिज्ञा को हमारे लिए पूरा किया है, जैसा कि भजन संहिता के दूसरे भजन में लिखा भी गया है, तू मेरा पुत्र है, मैंने तुझे आज ही जन्म दिया है। और उसने उसे मरे हुए में से जिला कर उठाया ताकि क्षय होने के लिए उसे फिर लौटाना न पड़े। उसने इस प्रकार कहा था, मैं तुझे वे पवित्र और अटल आशीष दूंगा जिन्हें देने का वचन मैंने दाऊद को दिया था। इसी प्रकार एक अन्य भजन संहिता में वह कहता है, तू अपने उस पवित्र जन को क्षय का अनुभव नहीं होने देगा। फिर दाऊद अपने युग में परमेश्वर के प्रयोजन के अनुसार अपना सेवा कार्य पूरा करके चिर निद्रा में सो गया। उसे उसके पूर्वजों के साथ दफना दिया गया और उसका क्षय हुआ, किंतु जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं के बीच से जिलाकर उठाया उसका क्षय नहीं हुआ। सो हे भाइयों, तुम्हें जान लेना चाहिए कि यीशु के द्वारा ही पापों की क्षमा का उपदेश तुम्हें दिया गया है और इसी के द्वारा हर कोई जो विश्वासी है उन पापों से छुटकारा पा सकता है जिनसे तुम्हें मूसा की व्यवस्था छुटकारा नहीं दिला सकती थी। सो सावधान रहो, कहीं नबियों ने जो कुछ कहा है तुम पर न घट जाए। निंदा करने वालों, देखो भौचक्के होकर मर जाओ, क्योंकि तुम्हारे युग में एक कार्य ऐसा करता हूँ जिसकी चर्चा तक पर तुमको कभी प्रतीति नहीं होने की।
पौलुस और बरनबास जब वहाँ से जा रहे थे तो लोगों ने उनसे अगले सप्त के दिन ऐसी ही और बातें बताने की प्रार्थना की। जब सभा समाप्त हुई तो बहुत से यहूदियों और गैर यहूदी भक्तों ने पौलुस और बरनबास का अनुसरण किया। पौलुस और बरनबास ने उनसे बातचीत करते हुए आग्रह किया कि वे परमेश्वर के अनुग्रह में स्थिति बनाए रखें। अगले सप्त के दिन तो लगभग समूचा नगर ही प्रभु का वचन सुनने के लिए उमड़ पड़ा। इस विशाल जनसमूह को जब यहूदियों ने देखा तो वे बहुत कुढ़ गए और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए पौलुस ने जो कुछ कहा था उसका विरोध करने लगे। किंतु पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा,
यह आवश्यक था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, किंतु क्योंकि तुम उसे नकारते हो तथा तुम अपने आप को अनंत जीवन के योग्य नहीं समझते, सो हम अब गैर यहूदियों की ओर मुड़ते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें ऐसी आज्ञा दी है, मैंने तुमको गैर यहूदियों के लिए ज्योति बनाया ताकि धरती के छोर तक सभी के उद्धार का माध्यम हो।
गैर यहूदियों ने जब यह सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रभु के वचन का सम्मान किया। फिर उन्होंने जिन्हें अनंत जीवन पाने के लिए निश्चित किया था विश्वास ग्रहण कर लिया। इस प्रकार उस समूचे क्षेत्र में प्रभु के वचन का प्रसार होता रहा। उधर यहूदियों ने उच्च कुल की भक्त महिलाओं और नगर के प्रमुख व्यक्तियों को भड़काया तथा पौलुस और बरनबास के विरुद्ध अत्याचार करने आरंभ कर दिए और दबाव डालकर उन्हें अपने क्षेत्र से बाहर निकलवा दिया। फिर पौलुस और बरनबास उनके विरोध में अपने पैरों की धूल झाड़ कर इकुनियुम को चल दिए, किंतु उनके शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे। प्रेरितों के काम अध्याय 14। इसी प्रकार पौलुस और बरनबास इकुनियुम में यहूदी आराधनालय में गए। वहां उन्होंने इस ढंग से व्याख्यान दिया कि यहूदियों के एक विशाल जनसमूह ने विश्वास धारण किया, किंतु उन यहूदियों ने जो विश्वास नहीं कर सके थे गैर यहूदियों को भड़काया और बंधुओं के विरुद्ध उनके मनों में कटुता पैदा कर दी। सो पौलुस और बरनबास वहां बहुत दिनों तक ठहरे रहे तथा प्रभु के विषय में निर्भयता से प्रवचन करते रहे। उनके द्वारा प्रभु अद्भुत चिन्ह और आश्चर्य कर्मों को करवाता हुआ अपनी दया के संदेश की प्रतिष्ठा कराता रहा। उधर नगर के लोगों में फूट पड़ गई, कुछ प्रेरितों की तरफ और कुछ यहूदियों की तरफ हो गए। फिर जब गैर यहूदियों और यहूदियों ने अपने नेताओं के साथ मिलकर उनके साथ बुरा व्यवहार करने और उन पर पथराव करने की चाल चली, जब पौलुस और बरनबास को इसका पता चल गया और वे लुकाउनिया के लिस्त्रा और दिर्बे जैसे नगरों तथा आसपास के क्षेत्रों में बच भागे, वहां भी वे सुसमाचार का प्रचार करते रहे। लिस्त्रा में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वह अपने पैरों से अपंग था, वह जन्म से ही लंगड़ा था। चल फिर तो वह कभी नहीं पाया। इस व्यक्ति ने पौलुस को बोलते हुए सुना था। पौलुस ने उस पर दृष्टि गड़ाई और देखा कि अच्छा हो जाने का विश्वास उसमें है। सो पौलुस ने ऊंचे स्वर में कहा,
अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो जा।
सो वह ऊपर उछला और चलने फिरने लगा। पौलुस ने जो कुछ किया था, जब भीड़ ने उसे देखा तो लोग लुकाउनिया की भाषा में पुकार कर कहने लगे,
हमारे बीच मनुष्यों का रूप धारण करके देवता उतर आए हैं।
वे बरनबास को जेस और पौलुस को हिर्मेस कहने लगे। पौलुस को हिर्मेस इसलिए कहा गया क्योंकि वह प्रमुख वक्ता था। नगर के ठीक बाहर बने जेस के मंदिर का याजक नगर द्वार पर सांडों और मालाओं को लेकर आ पहुंचा। वह भीड़ के साथ पौलुस और बरनबास के लिए बलि चढ़ाना चाहता था, किंतु जब प्रेरित बरनबास और पौलुस ने यह सुना तो उन्होंने अपने कपड़े फाड़ डाले और वे ऊंचे स्वर में यह कहते हुए भीड़ में घुस गए,
हे लोगों, तुम यह क्यों कर रहे हो? हम भी वैसे ही मनुष्य हैं जैसे तुम हो। यहाँ हम तुम्हें सुसमाचार सुनाने आए हैं ताकि तुम इन व्यर्थ की बातों से मुड़कर उस सजीव परमेश्वर की ओर लौटो, जिसने आकाश, धरती, सागर और इनमें जो कुछ है उसकी रचना की। बीते काल में उसने सभी जातियों को उनकी अपनी अपनी राहों पर चलने दिया, किंतु तुम्हें उसने स्वयं अपनी साक्षी दिए बिना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ भलाइयां की। उसने तुम्हें आकाश से वर्षा दी और ऋतु के अनुसार फसलें दी। वही तुम्हें भोजन देता है और तुम्हारे मन को आनंद से भर देता है।
इन वचनों के बाद भी वे भीड़ को उनके लिए बलि चढ़ाने से प्रायः नहीं रोक पाए। फिर अंताकिया और इकुनियम से आए यहूदियों ने भीड़ को अपने पक्ष में करके पौलुस पर पथराव किया और उसे मरा जानकर नगर के बाहर घसीट ले गए। फिर जब शिष्य उसके चारों ओर इकट्ठे हुए तो वह उठा और नगर में चला आया, और फिर अगले दिन बरनबास के साथ वह दिर्बे के लिए चल पड़ा। उस नगर में उन्होंने सुसमाचार का प्रचार करके बहुत से शिष्य बनाए और उनकी आत्माओं को स्थिर करके विश्वास में बने रहने के लिए उन्हें यह कहकर प्रेरित किया,
हमें बड़ी यातनाएं झेलकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है।
वे लिस्त्रा, इकुनियम और अंताकिया लौट आए। हर कलीसिया में उन्होंने उन्हें उस प्रभु को सौंप दिया जिसमें उन्होंने विश्वास किया था। इसके पश्चात पिसिदिया से होते हुए वे पंफूलिया आ पहुंचे और पिरगा में जब सुसमाचार सुना चुके तो इटली चले गए। वहां से वे अंताकिया को जहाज द्वारा गए, जहां जिस काम को अभी उन्होंने पूरा किया था उस काम के लिए वे परमेश्वर के अनुग्रह को समर्पित हो गए। सो जब वे पहुंचे तो उन्होंने कलीसिया के लोगों को इकट्ठा किया और परमेश्वर ने उनके साथ जो कुछ किया था उसका विवरण कह सुनाया, और उन्होंने घोषणा की कि परमेश्वर ने विधर्मियों के लिए भी विश्वास का द्वार खोल दिया है। फिर अनुयायियों के साथ वे बहुत दिनों तक वहां ठहरे रहे। प्रेरितों के काम, अध्याय 15। फिर कुछ लोग यहूदिया से आए और भाइयों को शिक्षा देने लगे,
यदि मूसा के विधि के अनुसार तुम्हारा खतना नहीं हुआ है तो तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता।
पौलुस और बरनबास उनसे सहमत नहीं थे, सो उनमें एक बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ। सो पौलुस, बरनबास तथा उनके कुछ और साथियों को इस समस्या के समाधान के लिए प्रेरितों और मुखियाओं के पास यरूशलेम भेजने का निश्चय किया गया। वे कलीसिया के द्वारा भेजे जाकर फिनीके और सामरिया होते हुए सभी भाइयों को अधर्मियों के हृदय परिवर्तन का विस्तार के साथ समाचार सुनाकर उन्हें हर्षित कर रहे थे। फिर जब वे यरूशलेम पहुंचे तो कलीसिया ने, प्रेरितों ने और बुजुर्गों ने उनका स्वागत सत्कार किया, और उन्होंने उनके साथ परमेश्वर ने जो कुछ किया था वह सब कुछ उन्हें कह सुनाया। इस पर फरीसियों के दल के कुछ विश्वासी खड़े हुए और बोले,
उनका खतना अवश्य किया जाना चाहिए और उन्हें आदेश दिया जाना चाहिए कि वे मूसा की व्यवस्था के विधान का पालन करें।
सो इस प्रश्न पर विचार करने के लिए प्रेरित तथा बुजुर्ग लोग परस्पर एकत्र हुए। एक लंबे चौड़े वाद विवाद के बाद पतरस खड़ा हुआ और उनसे बोला,
भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिनों पहले तुम में से प्रभु ने एक चुनाव किया था कि मेरे द्वारा अधर्मी लोग सुसमाचार का संदेश सुनेंगे और विश्वास करेंगे, और अंतर्यामी परमेश्वर ने हमारे ही समान उन्हें भी पवित्र आत्मा का वरदान देकर उनके संबंध में अपना समर्थन दर्शाया था। विश्वास के द्वारा उनके हृदयों को पवित्र करके हमारे और उनके बीच उसने कोई भेदभाव नहीं किया। सो अब शिष्यों की गर्दन पर एक ऐसा जुआ लाद कर जिसे ना हम उठा सकते हैं और ना हमारे पूर्वज, तुम परमेश्वर को झमेले में क्यों डालते हो? किंतु हमारा तो यह विश्वास है कि प्रभु यीशु के अनुग्रह से जैसे हमारा उद्धार हुआ है, वैसे ही हमें भरोसा है कि उनका भी उद्धार होगा।
इस पर समूचा दल चुप हो गया और बरनबास तथा पौलुस को सुनने लगा। वे गैर यहूदियों के बीच परमेश्वर ने उनके द्वारा दो अद्भुत चिन्ह प्रकट किए और आश्चर्य कर्म किए थे उनका विवरण दे रहे थे। वे जब बोल चुके तो याकूब कहने लगा,
हे भाइयों, मेरी सुनो, शिमोन ने बताया था कि परमेश्वर ने गैर यहूदियों में से कुछ लोगों को अपने नाम के लिए चुनकर सर्वप्रथम कैसे प्रेम प्रकट किया था। नबियों के वचन भी इसका समर्थन करते हैं, जैसा कि लिखा गया है, मैं इसके बाद आऊंगा, फिर से मैं खड़ा करूंगा दाऊद के उस घर को जो गिर चुका, फिर से संवारूंगा उसके खंडरों को, जीर्णोद्धार करूंगा, ताकि जो बचे हैं वे गैर यहूदी सभी जो अब मेरे कहलाते हैं प्रभु की खोज करें। यह बात वही प्रभु कहता है जो युग युग से इन बातों को प्रकट करता रहा है। इस प्रकार मेरा यह निर्णय है कि हमें उन लोगों को जो गैर यहूदी होते हुए भी परमेश्वर की ओर मुड़े हैं सताना नहीं चाहिए, बल्कि हमें तो उनके पास लिख भेजना चाहिए कि मूर्तियों पर चढ़ाया गया भोजन तुम्हें नहीं लेना चाहिए और व्यभिचार से बचे रहें, गला घोट कर मारे गए किसी भी पशु का मांस खाने से बचें और लोहू को कभी ना खाएं। अनादिकाल से मूसा की व्यवस्था के विधान का पाठ करने वाले नगर नगर में पाए जाते रहे हैं। हर सप्त के दिन मूसा की व्यवस्था के विधान का आराधनालयों में पाठ होता रहा है।
फिर प्रेरितों और बुजुर्गों ने समूचे कलीसिया के साथ यह निश्चय किया कि उन्हीं में से कुछ लोगों को चुनकर पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया भेजा जाए। सो उन्होंने बरसब्बा कहे जाने वाले यहूदा और सिलास को चुन लिया। वे भाइयों में सर्व प्रमुख थे। उन्होंने उनके हाथों यह पत्र भेजा,
तुम्हारे बंधु बुजुर्गों और प्रेरितों की ओर से अंताकिया, सीरिया और किलिकिया के गैर यहूदी भाइयों को नमस्कार पहुँचे। प्यारे भाइयों, हमने जब से यह सुना है कि हमसे कोई आदेश पाए बिना ही हम में से कुछ लोगों ने जाकर अपने शब्दों से तुम्हें दुख पहुँचाया है और तुम्हारे मन को अस्थिर कर दिया है, हम सब ने परस्पर सहमत होकर यह निश्चय किया है कि हम अपने में से कुछ लोग चुने और अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ उन्हें तुम्हारे पास भेजें। ये वे ही लोग हैं जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। हम यहूदा और सिलास को भेज रहे हैं, वे तुम्हें अपने मुंह से इन सब बातों को बताएंगे। पवित्र आत्मा को और हमें यही उचित जान पड़ा कि तुम पर इन आवश्यक बातों के अतिरिक्त और किसी बात का बोझ न डाला जाए। मूर्तियों पर चढ़ाया गया भोजन तुम्हें नहीं लेना चाहिए, गला घोंट कर मारे गए किसी भी पशु का मांस खाने से बचें और लोहू को कभी न खाएं। व्यभिचार से बचे रहो। यदि तुमने अपने आप को इन बातों से बचाए रखा तो तुम्हारा कल्याण होगा। अच्छा, विदा।
इस प्रकार उन्हें विदा कर दिया गया और वे अंताकिया जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने धर्म सभा बुलाई और उन्हें वह पत्र दे दिया। पत्र पढ़कर जो प्रोत्साहन उन्हें मिला उस पर उन्होंने आनंद मनाया। यहूदा और सिलास ने, जो स्वयं ही दोनों नबी थे, भाइयों के सामने उन्हें उत्साहित करते हुए और दृढ़ता प्रदान करते हुए एक लंबा प्रवचन किया। वहाँ कुछ समय बिताने के बाद भाइयों ने उन्हें शांतिपूर्वक उन्हीं के पास लौट जाने को विदा किया जिन्होंने उन्हें भेजा था। पौलुस तथा बर्नबास ने अंताकिया में कुछ समय बिताया। बहुत से दूसरे लोगों के साथ उन्होंने प्रभु के वचन का उपदेश देते हुए लोगों में सुसमाचार का प्रचार किया। कुछ दिनों बाद बर्नबास से पौलुस ने कहा,
आओ, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु के वचन का प्रचार किया है वहाँ अपने भाइयों के पास वापस चलकर यह देखें कि वे क्या कुछ कर रहे हैं।
बर्नबास चाहता था कि मरकुस कहलाने वाले यूहन्ना को भी वे अपने साथ ले चलें, किंतु पौलुस ने यही ठीक समझा कि वे उसे अपने साथ न लें जिसने पंफूलिया में उनका साथ छोड़ दिया था और प्रभु के कार्य में जिसने उनका साथ नहीं निभाया। इस पर उन दोनों में तीव्र विरोध पैदा हो गया। परिणाम यह हुआ कि वे आपस में एक दूसरे से अलग हो गए। बर्नबास मरकुस को लेकर पानी के जहाज से साइप्रस चला गया। पौलुस सिलास को चुनकर वहां से चला गया और भाइयों ने उसे प्रभु के संरक्षण में सौंप दिया। सो पौलुस सीरिया और किलकिया की यात्रा करते हुए वहां की कलीसिया को सुदृढ़ करता रहा। प्रेरितों के काम अध्याय 16। पौलुस दिर्बे और लुस्त्रा में भी आया। वहीं तिमुथियुस नामक एक शिष्य हुआ करता था। वह किसी विश्वासी यहूदी महिला का पुत्र था, किंतु उसका पिता यूनानी था। लिस्त्रा और इकुनियम के बंधुओं के साथ उसकी अच्छी बोलचाल थी। पौलुस तिमुथियुस को यात्रा पर अपने साथ ले जाना चाहता था, सो उसे उसने साथ ले लिया और उन स्थानों पर रहने वाले यहूदियों के कारण उसका खतना किया, क्योंकि वे सभी जानते थे कि उसका पिता एक यूनानी था। नगरों से यात्रा करते हुए उन्होंने वहां के लोगों को उन नियमों के बारे में बताया जिन्हें यरूशलेम में प्रेरितों और बुजुर्गों ने निश्चित किया था। इस प्रकार वहां की कलीसिया का विश्वास और सुदृढ़ होता गया और दिन प्रतिदिन उनकी संख्या बढ़ने लगी। सो वे फ्रूगिया और गलातिया के क्षेत्र से होकर निकले, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने को मना कर दिया था। फिर वे जब मूसिया की सीमा पर पहुंचे तो उन्होंने बितुनिया जाने का जतन किया, किंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें वहां भी नहीं जाने दिया। सो वे मूसिया होते हुए त्रोआस पहुंचे। रात के समय पौलुस ने दिव्य दर्शन में देखा कि मकिदुनिया का एक पुरुष उससे प्रार्थना करते हुए कह रहा है,
मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर।
इस दिव्य दर्शन को देखने के बाद तुरंत ही यह परिणाम निकालते हुए कि परमेश्वर ने उन लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार करने हमें बुलाया है, हमने मकिदुनिया जाने की ठान ली। इस प्रकार हमने त्रोआस से जल मार्ग द्वारा जाने के लिए अपनी नावें खोल दी और सीधे समोथ्रोके जा पहुंचे। फिर अगले दिन नियापोलिस चले गए। वहां से हम एक रोमी उपनिवेश फिलिप्पी पहुंचे, जो मकिदुनिया के उस क्षेत्र का एक प्रमुख नगर है। इस नगर में हमने कुछ दिन बिताए। फिर शब्द के दिन, यह सोचते हुए कि प्रार्थना करने के लिए वहां कोई स्थान होगा, हम नगर द्वार के बाहर नदी पर गए। हम वहां बैठ गए और एकत्र स्त्रियों से बातचीत करने लगे। वहीं लीदिया नाम की एक महिला थी। वह बैंजनी रंग के कपड़े बेचा करती थी। वह परमेश्वर की उपासक थी। वह बड़े ध्यान से हमारी बातें सुन रही थी। प्रभु ने उसके हृदय के द्वार खोल दिए थे ताकि जो कुछ पौलुस कह रहा था वह उन बातों पर ध्यान दे सके। अपने समूचे परिवार समेत बपतिस्मा लेने के बाद उसने हमसे यह कहते हुए विनती की,
यदि तुम मुझे प्रभु की सच्ची भक्त मानते हो तो आओ और मेरे घर ठहरो।
सो उसने हमें जाने के लिए तैयार कर लिया। फिर ऐसा हुआ कि जब हम प्रार्थना स्थल की ओर जा रहे थे, हमें एक दासी मिली जिसमें एक शकुन बताने वाली आत्मा समाई थी। वह लोगों का भाग्य बताकर अपने स्वामियों को बहुत सा धन कमा कर देती थी। वह हमारे और पौलुस के पीछे पीछे यह चिल्लाते हुए होली,
ये लोग परम परमेश्वर के सेवक हैं, ये तुम्हें मुक्ति के मार्ग का संदेश सुना रहे हैं।
वह बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही, सो पौलुस परेशान हो उठा। उसने मुड़कर उस आत्मा से कहा,
मैं यीशु मसीह के नाम पर तुझे आज्ञा देता हूँ, इस लड़की में से बाहर निकल आए।
सो वह उनमें से तत्काल बाहर निकल गई। फिर उसके स्वामियों ने जब देखा कि उनकी कमाई की आशा पर ही पानी फिर गया है, तो उन्होंने पौलुस और सिलास को धर दबोचा और उन्हें घसीटते हुए बाजार के बीच अधिकारियों के सामने ले गए। फिर दंडनायक के पास उन्हें ले जाकर वे बोले,
ये लोग यहूदी हैं और हमारे नगर में गड़बड़ी फैला रहे हैं। ये ऐसे रीति रिवाजों की वकालत करते हैं जिन्हें अपनाना या जिन पर चलना हम रोमियों के लिए न्यायपूर्ण नहीं है।
भीड़ भी विरोध में लोगों के साथ होकर उन पर चढ़ आई। दंडाधिकारी ने उनके कपड़े फड़वा कर उतरवा दिए और आज्ञा दी कि उन्हें पीटा जाए। उन पर बहुत मार पड़ चुकने के बाद उन्होंने उन्हें जेल में डाल दिया और जेल के अधिकारी को आज्ञा दी कि उन पर कड़ा पहरा बैठा दिया जाए। ऐसी आज्ञा पाकर उसने उन्हें जेल की भीतरी कोठरी में डाल दिया। उसने उनके पैर काठ में कस दिए। लगभग आधी रात गए पौलुस और सिलास परमेश्वर के भजन गाते हुए प्रार्थना कर रहे थे और दूसरे कैदी उन्हें सुन रहे थे। तभी वहाँ अचानक एक ऐसा भयानक भूकंप हुआ कि जेल की नींवें हिल उठी और तुरंत जेल के फाटक खुल गए। हर किसी की बेड़ियाँ ढीली होकर गिर पड़ी। जेल के अधिकारी ने जागकर जब देखा कि जेल के फाटक खुले पड़े हैं, तो उसने अपनी तलवार खींच ली और यह सोचते हुए कि कैदी भाग निकले हैं, वह स्वयं को जब मारने ही वाला था, तभी पौलुस ने ऊंचे स्वर में पुकारते हुए कहा,
अपने को हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं।
इस पर जेल के अधिकारी ने मशाल मंगवाई और जल्दी से भीतर गया और भय से कांपते हुए पौलुस और सिलास के सामने गिर पड़ा। फिर वह उन्हें बाहर ले जाकर बोला,
महानुभाव, उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए?
उन्होंने उत्तर दिया,
प्रभु यीशु पर विश्वास कर, इससे तेरा उद्धार होगा, तेरा और तेरे परिवार का।
फिर उसके समूचे परिवार के साथ उन्होंने उसे प्रभु का वचन सुनाया। फिर जेल का वह अधिकारी उसी रात और उसी घड़ी उन्हें वहां से ले गया। उसने उनके घाव धोए और अपने सारे परिवार के साथ उनसे बपतिस्मा लिया। फिर वह पौलुस और सिलास को अपने घर ले आया और उन्हें भोजन कराया। परमेश्वर में विश्वास ग्रहण कर लेने के कारण उसने अपने समूचे परिवार के साथ आनंद मनाया। जब पौ फटी तो दंडाधिकारियों ने यह कहने अपने सिपाहियों को वहां भेजा कि उन लोगों को छोड़ दिया जाए। फिर जेल के अधिकारी ने ये बातें पौलुस को बताई कि दंडाधिकारी ने तुम्हें छोड़ देने के लिए कहलवा भेजा है, इसलिए अब तुम बाहर आओ और शांति के साथ चले जाओ। किंतु पौलुस ने उन सिपाहियों से कहा,
यद्यपि हम रोमी नागरिक हैं, पर उन्होंने हमें अपराधी पाए बिना ही सबके सामने मारा पीटा और जेल में डाल दिया, और अब चुपके चुपके वे हमें बाहर भेज देना चाहते हैं। निश्चय ही ऐसा नहीं होगा, होना तो यह चाहिए कि वे स्वयं आकर हमें बाहर निकालें।
सिपाहियों ने दंडाधिकारियों को ये शब्द जा सुनाए। दंडाधिकारियों को जब यह पता चला कि पौलुस और सिलास रोमी हैं, तो वे बहुत डर गए। सो वे वहां आए और उनसे क्षमा याचना करके उन्हें बाहर ले गए और उनसे उस नगर को छोड़ जाने को कहा। पौलुस और सिलास जेल से बाहर निकलकर लीदिया के घर पहुंचे। धर्म बंधुओं से मिलते हुए उन्होंने उनका उत्साह बढ़ाया और फिर वहां से चल दिए। प्रेरितों के काम अध्याय 17। फिर अम्फिपुलिस और अपुल्लोनिया की यात्रा समाप्त करके वे थिस्सलुनीके जा पहुंचे। वहां यहूदियों का एक आराधनालय था। अपने सामान्य स्वभाव के अनुसार पौलुस उनके पास गया और 3 शब्द तक उनके साथ शास्त्रों पर विचार विनिमय करता रहा और शास्त्रों से लेकर उन्हें समझाते हुए यह सिद्ध करता रहा कि मसीह को यातनाएं झेलनी ही थी और फिर उसे मरे हुओं में से जी उठना था। वह कहता,
यह यीशु ही जिसका मैं तुम्हारे बीच प्रचार करता हूँ मसीह है।
उनमें से कुछ जो सहमत हो गए थे पौलुस और सिलास के मत में सम्मिलित हो गए। परमेश्वर से डरने वाले अनगिनत यूनानी भी उनमें मिल गए। इनमें अनेक महत्वपूर्ण स्त्रियां भी सम्मिलित थीं। पर यहूदी तो डाह में जले जा रहे थे। उन्होंने कुछ बाजारू गुंडों को इकट्ठा किया और एक हुजूम बनाकर नगर में दंगे करा दिए। उन्होंने यासोन के घर पर धावा बोल दिया और यह कोशिश करने लगे कि किसी तरह पौलुस और सिलास को लोगों के सामने ले आए, किंतु जब वे उन्हें नहीं पा सके तो यासोन को और कुछ दूसरे बंधुओं को नगर अधिकारियों के सामने घसीट लाए। वे चिल्लाए,
ये लोग जिन्होंने सारी दुनिया में उथल पुथल मचा रखी है अब यहाँ आए हैं और यासोन सम्मान के साथ उन्हें अपने घर में ठहराए हुए हैं और वे सभी कैसर के आदेशों के विरोध में काम करते हैं और कहते हैं एक राजा और है जिसका नाम है यीशु।
जब भीड़ ने और नगर के अधिकारियों ने यह सुना तो वे भड़क उठे और इस प्रकार उन्होंने यासोन तथा दूसरे लोगों को जमानती मुचेलका लेकर छोड़ दिया। फिर तुरंत रातों रात भाइयों ने पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया। वहां पहुंचकर वे यहूदी आराधनालय में गए। ये लोग थिस्सलुनीके के लोगों से अधिक अच्छे थे। इन लोगों ने पूरा मन लगाकर वचन को सुना और हर दिन शास्त्रों को उलटते पलटते यह जांचते रहे कि पौलुस ने जो बातें बताई हैं क्या वे सत्य हैं। परिणाम स्वरूप बहुत से यहूदियों और महत्वपूर्ण यूनानी स्त्री पुरुषों ने भी विश्वास ग्रहण किया। किंतु जब थिस्सलुनीके के यहूदियों को यह पता चला कि पौलुस बिरिया में भी परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा है तो वे वहां भी आधम के और वहां भी दंगे करना और लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। इसलिए तभी भाइयों ने तुरंत पौलुस को सागर तट पर जाने को भेज दिया, किंतु सिलास और तिमोथियस वहीं ठहरे रहे। पौलुस को ले जाने वाले लोगों ने उसे एथेंस पहुंचा दिया और सिलास तथा तिमोथियस के लिए यह आदेश देकर कि वे जल्दी से जल्दी उसके पास आ जाएं, वहीं से चल पड़े। पौलुस एथेंस में तिमोथियस और सिलास की प्रतीक्षा करते हुए नगर को मूर्तियों से भरा हुआ देखकर मन ही मन तिलमिला रहा था। इसलिए हर दिन वह यहूदी आराधनालय में यहूदियों और यूनानी भक्तों से वाद विवाद करता रहता था। वहाँ हाट बाजार में जो कोई होता वह उससे भी हर दिन बहस करता रहता। कुछ इपिकुरी और स्तोईकी दार्शनिक भी उससे शास्त्रार्थ करने लगे। उनमें से कुछ ने कहा,
यह अंट शंट बोलने वाला कहना क्या चाहता है।
दूसरों ने कहा,
यह तो विदेशी देवताओं का प्रचारक मालूम होता है।
उन्होंने यह इसलिए कहा था कि वह यीशु के बारे में उपदेश देता था और उसके फिर से जी उठने का प्रचार करता था। वे उसे पकड़कर अरियोपगुस की सभा में अपने साथ ले गए और बोले,
क्या हम जान सकते हैं कि तू जिसे लोगों के सामने रख रहा है वह नई शिक्षा क्या है।
तू कुछ विचित्र बातें हमारे कानों में डाल रहा है, सो हम जानना चाहते हैं कि इन बातों का अर्थ क्या है।
वहाँ रह रहे एथेंस के सभी लोग और परदेशी केवल कुछ नया सुनने या उन्हीं बातों की चर्चा के अतिरिक्त किसी भी और बात में अपना समय नहीं लगाते थे। तब पौलुस ने अरियुपगुस के सामने खड़े होकर कहा,
हे एथेंस के लोगों, मैं देख रहा हूँ तुम हर प्रकार से धार्मिक हो। घूमते फिरते तुम्हारी उपासना की वस्तुओं को देखते हुए मुझे एक ऐसी वेदी भी मिली जिस पर लिखा था अज्ञात परमेश्वर के लिए, सो तुम बिना जाने ही जिसकी उपासना करते हो मैं तुम्हें उसी का वचन सुनाता हूँ। परमेश्वर जिसने इस जगत की और इस जगत के भीतर जो कुछ है उसकी रचना की, वही धरती और आकाश का प्रभु है। वह हाथों से बनाए मंदिरों में नहीं रहता, उसे किसी वस्तु का अभाव नहीं है, सो मनुष्य के हाथों से उसकी सेवा नहीं हो सकती। वही सबको जीवन, सांसें और अन्य सभी कुछ दिया करता है। एक ही मनुष्य से उसने मनुष्य की सभी जातियों का निर्माण किया ताकि वे समूची धरती पर बस जाएं, और उसी ने लोगों का समय निश्चित कर दिया और उस स्थान की जहां वे रहें सीमाएं बांध दी। उसका प्रयोजन यह था कि लोग परमेश्वर को खोजें, हो सकता है वे उसे उस तक पहुंचकर पा लें। इतना होने पर भी हम में से किसी से भी वह दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हम रहते हैं, उसी में हमारी गति है और उसी में है हमारा अस्तित्व। इसी प्रकार स्वयं तुम्हारे ही कुछ लेखकों ने भी कहा है, क्योंकि हम उसके ही बच्चे हैं और क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि वह दिव्य अस्तित्व सोने या चांदी या पत्थर की बनी मानव कल्पना या कारीगरी से बनी किसी मूर्ति जैसा है। ऐसे अज्ञान के युग की परमेश्वर ने उपेक्षा कर दी है और अब हर कहीं के मनुष्यों को वह मन फिराव का आदेश दे रहा है। उसने एक दिन निश्चित किया है जब वह अपने नियुक्त किए गए एक पुरुष के द्वारा न्याय के साथ जगत का निर्णय करेगा। मरे हुओं में से उसे जिलाकर उसने हर किसी को इस बात का प्रमाण दिया है।
जब उन्होंने मरे हुओं में से जी उठने की बात सुनी तो उनमें से कुछ तो उसकी हंसी उड़ाने लगे, किंतु कुछ ने कहा,
हम इस विषय पर तेरा प्रवचन फिर कभी सुनेंगे।
तब पौलुस उन्हें छोड़कर चल दिया। कुछ लोगों ने विश्वास ग्रहण कर लिया और उसके साथ हो लिए। इनमें अरियुपगुस का सदस्य दियोनुसियुस और दमरिस नामक एक महिला तथा उनके साथ के और लोग भी थे। प्रेरितों के काम अध्याय 18। इसके बाद पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थियुस चला गया। वहां वह पुंतुस के रहने वाले अक्विला नाम के एक यहूदी से मिला जो हाल में ही अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से आया था। उन्होंने इटली इसलिए छोड़ी थी कि क्लौदियुस ने सभी यहूदियों को रोम से निकल जाने का आदेश दिया था। सो पौलुस उनसे मिलने गया और क्योंकि उनका काम धंधा एक ही था सो वह उन्हीं के साथ ठहरा और काम करने लगा। व्यवसाय से वे तंबू बनाने वाले थे। हर शब्द के दिन वह यहूदी आराधनालयों में तर्क वितर्क करके यहूदियों और यूनानियों को समझाने बुझाने का जतन करता। जब वे मकिदुनिया से सिलास और तिमुथियुस आए तब पौलुस ने अपना सारा समय वचन के प्रचार में लगा रखा था। वह यहूदियों को यह प्रमाणित किया करता था कि यीशु ही मसीह है। सो जब उन्होंने उसका विरोध किया और उसे भला बुरा कहा तो उसने उनके विरोध में अपने कपड़े झाड़ते हुए उनसे कहा,
तुम्हारा खून तुम्हारे ही सिर पड़े, उसका मुझसे कोई सरोकार नहीं है। अब से आगे मैं गैर यहूदियों के पास चला जाऊंगा।
इस तरह पौलुस वहां से चल पड़ा और तीतुस यूस्तुस नाम के एक व्यक्ति के घर गया। वह परमेश्वर का उपासक था। उसका घर यहूदी आराधनालय से लगा हुआ था। क्रिस्पुस ने, जो यहूदी आराधनालय का प्रधान था, अपने समूचे घराने के साथ प्रभु में विश्वास ग्रहण किया। साथ ही उन बहुत से कुरिन्थियों ने जिन्होंने पौलुस का प्रवचन सुना था, विश्वास ग्रहण करके बपतिस्मा लिया। एक रात सपने में प्रभु ने पौलुस से कहा,
डर मत, बोलता रह और चुप मत हो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, सो तुझ पर हमला करके कोई भी तुझे हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं।
सो पौलुस वहाँ 1.5 साल तक परमेश्वर के वचन की उनके बीच शिक्षा देते हुए ठहरा। जब अखाया का राज्यपाल गल्लियो था, तभी यहूदी एकजुट होकर पौलुस पर चढ़ाए और उसे पकड़कर अदालत में ले गए और बोले,
यह व्यक्ति लोगों को परमेश्वर की उपासना ऐसे ढंग से करने के लिए बहका रहा है जो व्यवस्था के विधान के विपरीत है।
पौलुस अभी अपना मुंह खोलने को ही था कि गल्लियों ने यहूदियों से कहा,
अरे यहूदियों, यदि यह विषय किसी अन्याय या गंभीर अपराध का होता तो तुम्हारी बात सुनना मेरे लिए न्याय संगत होता, किंतु क्योंकि यह विषय शब्दों, नामों और तुम्हारी अपनी व्यवस्था के प्रश्नों से संबंधित है, इसलिए इसे तुम अपने आप ही निपटो। ऐसे विषयों में मैं न्यायाधीश नहीं बनना चाहता।
और फिर उसने उन्हें अदालत के बाहर निकाल दिया। सो उन्होंने आराधनालय के नेता सोस्थिनेस को धर दबोचा और अदालत के सामने ही उसे पीटने लगे, किंतु गल्लियों ने इन बातों पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। बहुत दिनों बाद तक पौलुस वहां ठहरा रहा, फिर भाइयों से विदा लेकर वह नाव के रास्ते सीरिया को चल पड़ा। उसके साथ प्रिस्किल्ला तथा अक्विला भी थे। पौलुस ने किंखिया में अपने केश उतरवाए, क्योंकि उसने एक मन्नत मानी थी। फिर वे इफिसुस पहुंचे और पौलुस ने प्रिस्किल्ला और अक्विला को वहीं छोड़ दिया और आप आराधनालय में जाकर यहूदियों के साथ बहस करने लगा। जब वहां के लोगों ने उससे कुछ दिन और ठहरने को कहा तो उसने मना कर दिया, किंतु जाते समय उसने कहा,
यदि परमेश्वर की इच्छा हुई तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा।
फिर उसने इफिसुस से नाव द्वारा यात्रा की। फिर कैसरिया पहुंचकर वह यरूशलेम गया और वहां कलीसिया के लोगों से भेंट की। फिर वह अंताकिया की ओर चला गया। वहां कुछ समय बिताने के बाद उसने विदा ली और गलातिया एवं फ्रूगिया के क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हुए सभी अनुयायियों के विश्वास को बढ़ाने लगा। वहीं अपुल्लोस नाम का एक यहूदी था, वह सिकंदरिया का निवासी था, वह विद्वान वक्ता था। वह इफिसुस में आया, शास्त्रों का उसे संपूर्ण ज्ञान था, उसे प्रभु के मार्ग की दीक्षा भी मिली थी। वह हृदय में उत्साह भरकर प्रवचन करता और यीशु के विषय में बड़ी सावधानी से उपदेश देता था। यद्यपि उसे केवल योहन्ना के बपतिस्मा का ही ज्ञान था, यहूदी आराधनालय में वह निर्भय होकर बोलने लगा। जब प्रिस्किल्ला और अक्विला ने उसे बोलते सुना तो वे उसे एक और ले गए और अधिक बारीकी के साथ उसे परमेश्वर के मार्ग की व्याख्या समझाई। सो जब उसने अखाया को जाना चाहा तो भाइयों ने उसका साहस बढ़ाया और वहां के अनुयायियों को उसका स्वागत करने को लिख भेजा। जब वह वहां पहुंचा तो उनके लिए बड़ा सहायक सिद्ध हुआ, जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह से विश्वास ग्रहण कर लिया था, क्योंकि शास्त्रों से यह प्रमाणित करते हुए कि यीशु ही मसीह है, उसने यहूदियों को जनता के बीच जोरदार शब्दों में बोलते हुए शास्त्रार्थ में पछाड़ा था। प्रेरितों के काम अध्याय 19। ऐसा हुआ कि जब अपुल्लोस कुरंथुस में था, तभी पौलुस भीतरी प्रदेशों से यात्रा करता हुआ इफिसुस में आ पहुंचा। वहां उसे कुछ शिष्य मिले और उसने उनसे कहा,
क्या जब तुमने विश्वास धारण किया था तब पवित्र आत्मा को ग्रहण किया था?
उन्होंने उत्तर दिया,
हमने तो सुना तक नहीं है कि कोई पवित्र आत्मा है भी।
सो वह बोला,
तो तुमने कैसा बपतिस्मा लिया है?
उन्होंने कहा,
यूहन्ना का बपतिस्मा।
फिर पौलुस ने कहा,
यूहन्ना का बपतिस्मा तो मन फिराव का बपतिस्मा था। उसने लोगों से कहा था कि जो मेरे बाद आ रहा है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करो।
यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा ले लिया। फिर जब पौलुस ने उन पर अपने हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतर आया और वे अलग अलग भाषाएं बोलने और भविष्यवाणियां करने लगे। कुल मिलाकर वे कोई 12 व्यक्ति थे। फिर पौलुस यहूदी आराधनालय में चला गया और 3 महीने निडर होकर बोलता रहा। वह यहूदियों के साथ बहस करते हुए उन्हें परमेश्वर के राज्य के विषय में समझाया करता था। किंतु उनमें से कुछ लोग बहुत हटी थे। उन्होंने विश्वास ग्रहण करने को मना कर दिया और लोगों के सामने पंथ को भला बुरा कहते रहे। सो वह अपने शिष्यों को साथ ले उन्हें छोड़कर चला गया और तरन्नुस की पाठशाला में हर दिन विचार विमर्श करने लगा। 2 साल तक ऐसा ही होता रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि सभी एशिया निवासी यहूदियों और गैर यहूदियों ने प्रभु का वचन सुन लिया। परमेश्वर पौलुस के हाथों अनहोने आश्चर्य कर्म कर रहा था, यहां तक कि उसके छुए रुमालों और अंगोछों को रोगियों के पास ले जाया जाता और उनकी बीमारियां दूर हो जाती तथा दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल भागती। कुछ यहूदी लोग जो दुष्ट आत्माएं उतारते इधर उधर घूमा फिरा करते थे, यह करने लगे कि जिन लोगों में दुष्ट आत्माएं समाई थी उन पर प्रभु यीशु के नाम का प्रयोग करने का यत्न करते और कहते,
मैं तुम्हें उस यीशु के नाम पर जिसका प्रचार पौलुस करता है आदेश देता हूँ।
एक स्कीवा नाम के यहूदी महायाजक के 7 पुत्र जब ऐसा कर रहे थे तो दुष्ट आत्मा ने एक बार उनसे कहा,
मैं यीशु को पहचानती हूँ और पौलुस के बारे में भी जानती हूँ, किंतु तुम लोग कौन हो?
फिर वह व्यक्ति जिस पर दुष्टात्मा सवार थी उन पर झपटा। उसने उन पर काबू पाकर उन दोनों को हरा दिया। इस तरह वे नंगे ही घायल होकर उस घर से निकलकर भाग गए। इफिसुस में रहने वाले सभी यहूदियों और यूनानियों को इस बात का पता चल गया। वे सब लोग बहुत डर गए थे। इस प्रकार प्रभु यीशु के नाम का आदर और अधिक बढ़ गया। उनमें से बहुत से जिन्होंने विश्वास ग्रहण किया था अपने द्वारा किए गए बुरे कामों को सबके सामने स्वीकार करते हुए वहां आए। जादू टोना करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पुस्तकें लाकर वहां इकट्ठी कर दी और सबके सामने उन्हें जला दिया। उन पुस्तकों का मूल्य 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर था। इस प्रकार प्रभु का वचन अधिक प्रभावशाली होते हुए दूर दूर तक फैलने लगा। इन घटनाओं के बाद पौलुस ने अपने मन में मकिदुनिया और अखाया होते हुए यरूशलेम जाने का निश्चय किया। उसने कहा,
वहां जाने के बाद मुझे रोम भी देखना चाहिए।
सो उसने अपने तिमोथियस और इरास्तुस नाम 2 सहायकों को मकिदुनिया भेज दिया और स्वयं एशिया में थोड़ा समय और बिताया। उन्हीं दिनों इस पंथ को लेकर वहां बड़ा उपद्रव हुआ। वहां देमेत्रियुस नाम का एक चांदी का काम करने वाला सुनार हुआ करता था। वह अर्तिमिस के चांदी के मंदिर बनवाता था जिससे कारीगरों को बहुत कारोबार मिलता था। उसने उन्हें और इस काम से जुड़े हुए दूसरे कारीगरों को इकट्ठा किया और कहा,
देखो लोगों, तुम जानते हो कि इस काम से हमें एक अच्छी आमदनी होती है। तुम देख सकते हो और सुन सकते हो कि इस पौलुस ने ना केवल इफिसुस में बल्कि लगभग एशिया के समुचे क्षेत्र में लोगों को बहका फुसला कर बदल दिया है। वह कहता है कि मनुष्य के हाथों के बनाए देवता सच्चे देवता नहीं है। इससे न केवल इस बात का भय है कि हमारा व्यवसाय बदनाम होगा बल्कि महान देवी अर्तमिस के मंदिर की प्रतिष्ठा समाप्त हो जाने का भी डर है। और जिस देवी की उपासना समूचे एशिया और संसार द्वारा की जाती है उसकी गरिमा छिन जाने का भी डर है।
जब उन्होंने यह सुना तो वे बहुत क्रोधित हुए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे,
इफिसियों की देवी आर्टेमिस महान है।
उधर सारे नगर में अव्यवस्था फैल गई, सो लोगों ने मकिदुनिया से आए तथा पौलुस के साथ यात्रा कर रहे गयुस और अरिस्तर्वस को धर दबोचा और उन्हें रंगशाला में ले भागे। पौलुस लोगों के सामने जाना चाहता था किंतु शिष्यों ने उसे नहीं जाने दिया। कुछ प्रांतीय अधिकारियों ने जो उसके मित्र थे उससे कहलवा भेजा कि वह वहां रंगशाला में आने का दुस्साहस न करे। अब देखो कोई कुछ चिल्ला रहा था और कोई कुछ, क्योंकि समूची सभा में हड़बड़ी फैली हुई थी। उनमें से अधिकतर यह नहीं जानते थे कि वे वहां एकत्र क्यों हुए हैं। यहूदियों ने सिकंदर को, जिसका नाम भीड़ में से उन्होंने सुझाया था, आगे खड़ा कर रखा था। सिकंदर ने अपने हाथों को हिला हिला कर लोगों के सामने बचाव पक्ष प्रस्तुत करना चाहा, किंतु जब उन्हें यह पता चला कि वह एक यहूदी है तो वे सब कोई 2 घंटे तक एक स्वर में चिल्लाते हुए कहते रहे,
इफिसियों की देवी आर्टेमिस महान है।
फिर नगर लिपिक ने भीड़ को शांत करके कहा,
हे इफिसुस के लोगों, क्या संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो यह नहीं जानता कि इफिसुस नगर महान देवी आर्टेमिस और स्वर्ग से गिरी हुई पवित्र शिला का संरक्षक है? क्योंकि इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें शांत रहना चाहिए और बिना विचारे कुछ नहीं करना चाहिए। तुम इन लोगों को पकड़कर यहाँ लाए हो, यद्यपि उन्होंने ना तो कोई मंदिर लूटा है और ना ही हमारी देवी का अपमान किया है, फिर भी देमेत्रियुस और उसके साथी कारीगरों को किसी के विरुद्ध कोई शिकायत है तो अदालतें खुली हैं और वहाँ राज्यपाल हैं। वहाँ आपस में एक दूसरे पर वे अभियोग चला सकते हैं, किंतु यदि तुम इससे कुछ अधिक जानना चाहते हो तो उसका फैसला नियमित सभा में किया जाएगा। जो कुछ है उसके अनुसार हमें इस बात का डर है कि आज के उपद्रवों का दोष कहीं हमारे सिर ना मर दिया जाए। इस दंगे के लिए हमारे पास कोई भी हेतु नहीं है जिससे हम इसे उचित ठहरा सके।
इतना कहने के बाद उसने सभा विसर्जित कर दी। प्रेरितों के काम अध्याय 20। फिर इस उपद्रव के शांत हो जाने के बाद पौलुस ने यीशु के शिष्यों को बुलाया और उनका हौसला बढ़ाने के बाद उनसे विदा लेकर वह मकिदुनिया को चल दिया। उस प्रदेश से होकर उसने यात्रा की और वहां के लोगों की उत्साह के अनेक वचन प्रदान किए। फिर वह यूनान आ गया। वह वहां 3 महीने ठहरा और क्योंकि यहूदियों ने उसके विरुद्ध एक षड्यंत्र रच रखा था, सो जब वह जल मार्ग से सीरिया जाने को ही था कि उसने निश्चय किया कि वह मकिदुनिया को लौट जाए। बीरिया के पिरूस का बेटा सोपत्रुस, थिसलुनीकिया के रहने वाले अरिस्तर्खुस और सिकंदुस, दिर्बे का निवासी गयुस और तिमोथियुस तथा एशियाई क्षेत्र के तुखिकुस और त्रोफिमुस उसके साथ थे। ये लोग पहले चले गए थे और त्रोआस में हमारी परीक्षा कर रहे थे। बिना खमीर की रोटी के दिनों के बाद हम फिलिप्पी से नाव द्वारा चल पड़े और 5 दिन बाद त्रोआस में उनसे जा मिले। वहां हम 7 दिन तक ठहरे। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी विभाजित करने के लिए आपस में इकट्ठे हुए तो पौलुस उनसे बातचीत करने लगा। उसे अगले ही दिन चले जाना था, सो वह आधी रात तक बातचीत करता ही रहा। सीढ़ियों के ऊपर के कमरे में जहां हम इकट्ठे हुए थे वहां बहुत से दीपक थे। वहीं युतुखुस नामक एक युवक खिड़की पर बैठा था। वह गहरी नींद में डूबा था क्योंकि पौलुस बहुत देर से बोले ही चला जा रहा था, सो उसे गहरी नींद आ गई थी। इससे वह तीसरी मंजिल से नीचे लुढ़क पड़ा और जब उसे उठाया तो वह मर चुका था। पौलुस नीचे उतरा और उससे लिपट गया। उसे अपनी बाहों में लेकर उसने कहा,
घबराओ मत, क्योंकि उसके प्राण अभी उसी में हैं।
फिर वह ऊपर चला गया और उसने रोटी को तोड़कर विभाजित किया और उसे खाया। वह उनके साथ बहुत देर पाव फटे तक बातचीत करता रहा, फिर उसने उनसे विदा ली। उस जीवित युवक को वे घर ले आए, इससे उन्हें बहुत चैन मिला। हम जहाज पर पहले ही पहुंच गए और अस्सुस को चल पड़े। वहां पौलुस को हमें जहाज पर लेना था। उसने ऐसी ही योजना बनाई थी, वह स्वयं पैदल आना चाहता था। वह जब अस्सुस में हमसे मिला तो हमने उसे जहाज पर चढ़ा लिया और हम मितेलेने को चल पड़े। दूसरे दिन वहां से चलकर हम खियुस के सामने जा पहुंचे और अगले दिन उस पार सामोस आ गए। फिर उसके एक दिन बाद हम मिलेतुस आ पहुंचे, क्योंकि पौलुस जहां तक हो सके पिंतेकुस्त के दिन तक यरूशलेम पहुंचने की जल्दी कर रहा था। सो उसने निश्चय किया कि वह इफिसुस में रुके बिना आगे चला जाएगा, जिससे उसे एशिया में समय न बिताना पड़े। उसने मिलेतुस से इफिसुस के बुजुर्गों और कलीसिया को संदेश भेजकर अपने पास बुलाया। उनके आने पर पौलुस ने उनसे कहा,
यह तुम जानते हो कि एशिया पहुंचने के बाद पहले दिन से ही हर समय मैं तुम्हारे साथ कैसे रहा हूं और दीनता पूर्वक आंसू बहा बहा कर यहूदियों के षड्यंत्रों के कारण मुझ पर पड़ी अनेक परीक्षाओं में भी मैं प्रभु की सेवा करता रहा। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे हित की कोई बात बताने से कभी हिचकिचाया नहीं, और मैं तुम्हें उन बातों का सब लोगों के बीच और घर घर जाकर उपदेश देने में कभी नहीं झिझका। यहूदियों और यूनानियों को मैं समान भाव से मन फिराव के परमेश्वर की तरफ मुड़ने को कहता रहा हूँ, और हमारे प्रभु यीशु में विश्वास के प्रति उन्हें सचेत करता रहा हूँ। और अब पवित्र आत्मा के अधीन होकर मैं यरूशलेम जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता वहाँ मेरे साथ क्या कुछ घटेगा। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि हर नगर में पवित्र आत्मा यह कहते हुए मुझे सचेत करती रहती है कि बंदी गृह और कठिनताएं मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, किंतु मेरे लिए मेरे प्राणों का कोई मूल्य नहीं है। मैं तो बस उस दौड़ धूप और उस सेवा को पूरा करना चाहता हूँ जिसे मैंने प्रभु यीशु से ग्रहण किया है, वह है परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की साक्षी देना। और अब मैं जानता हूँ कि तुम में से कोई भी जिनके बीच मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा मेरा मुंह आगे कभी नहीं देख पाएगा। इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने घोषणा करता हूँ कि तुम में से किसी के भी खून का दोषी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा को तुम्हें बताने में कभी नहीं हिचकिचाया हूँ। अपनी और अपने समुदाय की रखवाली करते रहो। पवित्र आत्मा ने उनमें से तुम्हें उन पर दृष्टि रखने वाला बनाया है, ताकि तुम परमेश्वर की उस कलीसिया का ध्यान रखो जिसे उसने अपने रक्त के बदले मोल लिया था। मैं जानता हूँ कि मेरे विदा होने के बाद हिंसक भेड़िये तुम्हारे बीच आएंगे और वे इस भोले भाले समूह को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तक कि तुम्हारे अपने बीच में से ही ऐसे लोग भी उठ खड़े होंगे जो शिष्यों को अपने पीछे लगा लेने के लिए बातों को तोड़ मरोड़ कर कहेंगे। इसलिए सावधान रहना, याद रखना कि मैंने 3 साल तक एक एक को दिन रात रो रो कर सचेत करना कभी नहीं छोड़ा था। अब मैं तुम्हें परमेश्वर और उसके सुसंदेश के अनुग्रह के हाथों सौंपता हूँ। वही तुम्हारा निर्माण कर सकता है और तुम्हें उन लोगों के साथ जिन्हें पवित्र किया जा चुका है तुम्हारा उत्तराधिकार दिला सकता है। मैंने कभी किसी के सोने चांदी या वस्त्रों की अभिलाषा नहीं की। तुम स्वयं जानते हो कि मेरे इन हाथों ने ही मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताओं को पूरा किया है। मैंने अपने हर कर्म से तुम्हें यह दिखाया है कि कठिन परिश्रम करते हुए हमें निर्बलों की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए, और हमें प्रभु यीशु का वह वचन याद रखना चाहिए जिसे उसने स्वयं कहा था,
लेने से देने में अधिक सुख है।
यह कह चुकने के बाद वह उन सब के साथ घुटनों के बल झुका और उसने प्रार्थना की। हर कोई फूट फूट कर रो रहा था, गले मिलते हुए वे उसे चूम रहे थे। उसने जो यह कहा था कि वे उसका मुंह फिर कभी नहीं देखेंगे, इससे लोग बहुत अधिक दुखी थे। फिर उन्होंने उसे सुरक्षा पूर्वक जहाज तक पहुंचा दिया। प्रेरितों के काम अध्याय 21। फिर उनसे विदा होकर हमने सागर में अपनी नाव खोल दी और सीधे रास्ते कोस जा पहुंचे और अगले दिन रोदुस। फिर वहां से हम पत्रा को चले गए। वहां हमने एक जहाज लिया जो फिनीके जा रहा था। जब साइप्रस दिखाई पड़ने लगा तो हम उसे बाईं तरफ छोड़कर सीरिया की ओर मुड़ गए, क्योंकि जहाज को सूर में माल उतारना था, सो हम भी वहीं उतर पड़े। वहां हमें अनुयायी मिले जिनके साथ हम 7 दिन तक ठहरे। उन्होंने आत्मा से प्रेरित होकर पौलुस को यरूशलेम जाने से रोकना चाहा। फिर वहां ठहरने का अपना समय पूरा करके हमने विदा ली और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। अपनी पत्नियों और बच्चों समेत वे सभी नगर के बाहर तक हमारे साथ आए। फिर वहां सागर तट पर हमने घुटनों के बल झुककर प्रार्थना की और एक दूसरे से विदा लेकर हम जहाज पर चढ़ गए और वे अपने अपने घरों को लौट गए। सूर से जलमार्ग द्वारा यात्रा करते हुए हम पतुलिमियस में उतरे। वहां भाइयों का स्वागत सत्कार करते हम उनके साथ एक दिन ठहरे। अगले दिन उन्हें छोड़कर हम कैसरिया आ गए और इंजील के प्रचारक फिलिप्पुस के, जो चुने हुए विशेष 7 सेवकों में से एक था, घर जाकर उसके साथ ठहरे। उसके 4 कुंवारी बेटियां थी जो भविष्यवाणी किया करती थी। वहां हमारे कुछ दिनों ठहरे रहने के बाद यहूदिया से अगबुस नामक एक नबी आया। हमारे निकट आते हुए उसने पौलुस का कमरबंद उठाकर उससे अपने ही पैर और हाथ बांध लिए और बोला,
यह है जो पवित्र आत्मा कह रहा है, यानी यरूशलेम में यहूदी लोग जिसका यह कमरबंद है उसे ऐसे ही बांधकर विधर्मियों के हाथों सौंप देंगे।
हमने जब यह सुना तो हमने और वहां के लोगों ने उससे यरूशलेम न जाने की प्रार्थना की। इस पर पौलुस ने उत्तर दिया,
इस प्रकार रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हुए यह तुम क्या कर रहे हो? मैं तो यरूशलेम में न केवल बांधे जाने के लिए बल्कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मरने तक को तैयार हूँ।
क्योंकि हम उसे मना नहीं पाए सो बस इतना कहकर चुप हो गए।
जैसी प्रभु की इच्छा।
इन दिनों के बाद फिर हम तैयारी करके यरूशलेम को चल पड़े। कैसरिया से कुछ शिष्य भी हमारे साथ हो लिए थे। वे हमें साइप्रस के एक व्यक्ति मनासोन के यहाँ ले गए, जो एक पुराना शिष्य था। हमें उसी के साथ ठहरना था। यरूशलेम पहुंचने पर भाइयों ने बड़े उत्साह के साथ हमारा स्वागत सत्कार किया। अगले दिन पौलुस हमारे साथ याकूब से मिलने गया। वहां सभी अग्रज उपस्थित थे। पौलुस ने उनका स्वागत सत्कार किया और उन सब कामों के बारे में जो परमेश्वर ने उसके द्वारा विधर्मियों के बीच कराए थे एक एक करके कह सुनाया। जब उन्होंने यह सुना तो वे परमेश्वर की स्तुति करते हुए उससे बोले,
बंधु तुम तो देख ही रहे हो, यहाँ कितने ही हजारों यहूदी ऐसे हैं जिन्होंने विश्वास ग्रहण कर लिया है, किंतु वे सभी व्यवस्था के प्रति अत्यधिक उत्साहित हैं। तेरे विषय में उनसे कहा गया है कि तू विधर्मियों के बीच रहने वाले सभी यहूदियों को मूसा की शिक्षाओं को त्यागने की शिक्षा देता है और उनसे कहता है कि वे ना तो अपने बच्चों का खतना कराएं और ना ही हमारे रीति रिवाजों पर चलें। सो क्या किया जाए, वे यह तो सुन ही लेंगे कि तू आया हुआ है। इसलिए तू वही कर जो तुझसे हम कह रहे हैं। हमारे साथ 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कोई मन्नत मानी है। इन लोगों को ले जा और उनके साथ शुद्धिकरण समारोह में सम्मिलित हो जा और उनका खर्चा दे दे ताकि वे अपने सिर मुड़वा लें। इससे सब लोग जान जाएंगे कि उन्होंने तेरे बारे में जो सुना है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि तू तो स्वयं ही व्यवस्था के अनुसार जीवन जीता है। जहाँ तक विश्वास ग्रहण करने वाले गैर यहूदियों का प्रश्न है, हमने उन्हें एक पत्र में लिख भेजा है, मूर्तियों पर चढ़ाया गया भोजन तुम्हें नहीं लेना चाहिए। गला घोंट कर मारे गए किसी भी पशु का मांस खाने से बचें और लोहू को कभी न खाएं। व्यभिचार से बचे रहो।
इस प्रकार पौलुस ने उन लोगों को अपने साथ लिया और उन लोगों के साथ अपने आप को भी अगले दिन शुद्ध कर लिया। फिर वह मंदिर में गया जहां उसने घोषणा की कि शुद्धिकरण के दिन कब पूरे होंगे और हम में से हर एक के लिए चढ़ावा कब चढ़ाया जाएगा। जब वे 7 दिन लगभग पूरे होने वाले थे, कुछ यहूदियों ने उसे मंदिर में देख लिया। उन्होंने भीड़ में सभी लोगों को भड़का दिया और पौलुस को पकड़ लिया। फिर वे चिल्लाकर बोले,
इज़राइल के लोगों, सहायता करो, ये वही व्यक्ति है जो हर कहीं हमारी जनता के, हमारी व्यवस्था के और हमारे इस स्थान के विरोध में लोगों को सिखाता फिरता है, और अब तो ये विधर्मियों को मंदिर में ले आया है और इसने इस प्रकार इस पवित्र स्थान को ही भ्रष्ट कर दिया है।
उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था कि त्रिफमुस नाम के एक इफिसी को नगर में उन्होंने उसके साथ देखकर ऐसा समझा था कि पौलुस उसे मंदिर में ले गया है। सो सारा नगर विरोध में उठ खड़ा हुआ। लोग दौड़ दौड़ कर चढ़ आए और पौलुस को पकड़ लिया। वे उसे घसीटते हुए मंदिर के बाहर ले गए और तत्काल फाटक बंद कर दिए गए। वे उसे मारने का जतन कर ही रहे थे कि रोमी टुकड़ी के सेना नायक के पास यह सूचना पहुंची कि समूचे यरूशलेम में खलबली मची हुई है। उसने तुरंत कुछ सिपाहियों और सेना के अधिकारियों को अपने साथ लिया और पौलुस पर हमला करने वाले यहूदियों की ओर बढ़ा। यहूदियों ने जब उस सेना नायक और सिपाहियों को देखा तो उन्होंने पौलुस को पीटना बंद कर दिया। तब वह सेना नायक पौलुस के पास आया और उसे बंदी बना लिया। उसने उसे 2 जंजीरों में बांध लेने का आदेश दिया। फिर उसने पूछा कि वह कौन है और उसने क्या किया है। भीड़ में से कुछ लोगों ने एक बात कही तो दूसरों ने दूसरी। इस हो हुल्लड़ में क्योंकि वह यह नहीं जान पाया कि सच्चाई क्या है, इसलिए उसने आज्ञा दी कि उसे छावनी में ले चला जाए। पौलुस जब सीढ़ियों के पास पहुंचा तो भीड़ में फैली हिंसा के कारण सिपाहियों को उसे अपनी सुरक्षा में ले जाना पड़ा, क्योंकि उसके पीछे लोगों की एक बड़ी भीड़ यह चिल्लाते हुए चल रही थी कि इसे मार डालो। जब वह छावनी के भीतर ले जाया जाने वाला ही था कि पौलुस ने सेना नायक से कहा,
क्या मैं तुझसे कुछ कह सकता हूँ?
सेना नायक बोला,
क्या तू यूनानी बोलता है? तो तू वह मिस्री तो नहीं है न, जिसने कुछ समय पहले विद्रोह शुरू कराया था और जो यहाँ रेगिस्तान में 4,000 आतंकवादियों की अगुवाई कर रहा था?
पौलुस ने कहा,
मैं सिलिकिया के तरसुस नगर का एक यहूदी व्यक्ति हूँ और एक प्रसिद्ध नगर का नागरिक हूँ। मैं तुझसे चाहता हूँ कि तू मुझे इन लोगों के बीच बोलने दे।
उससे अनुमति पाकर पौलुस ने सीढ़ियों पर खड़े होकर लोगों की तरफ हाथ हिलाते हुए संकेत किया। जब सब शांत हो गए तो पौलुस इब्रानी भाषा में लोगों से कहने लगा। प्रेरितों के काम अध्याय 22। पौलुस ने कहा,
हे भाइयों और पितृतुल्य सज्जनों, मेरे बचाव में अब मुझे जो कुछ कहना है उसे सुनो।
उन्होंने जब उसे इब्रानी भाषा में बोलते हुए सुना तो वे और अधिक शांत हो गए। फिर पौलुस ने कहा,
मैं एक यहूदी व्यक्ति हूँ, किलिकिया के तरसुस में मेरा जन्म हुआ था और मैं इसी नगर में पल पुस कर बड़ा हुआ। गमलियल के चरणों में बैठकर
हमारे परंपरागत विधान के अनुसार बड़ी कड़ाई के साथ मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। परमेश्वर के प्रति मैं बड़ा उत्साहित था, ठीक वैसे ही जैसे आज तुम सब हो। इस पंथ के लोगों को मैंने इतना सताया कि उनके प्राण तक निकल गए। मैंने पुरुषों और स्त्रियों को बंदी बनाया और जेलों में ठूंस दिया। स्वयं महायाजक और बुजुर्गों की समुची सभा इसे प्रमाणित कर सकती है। मैंने दमिश्क में इनके भाइयों के नाम इनसे पत्र भी लिया था और इस पंथ के वहाँ रह रहे लोगों को पकड़कर बंदी के रूप में यरूशलेम लाने के लिए मैं गया भी था, ताकि उन्हें दंड दिलाया जा सके। फिर ऐसा हुआ कि मैं जब यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुँचा तो लगभग दोपहर के समय आकाश से अचानक एक तीव्र प्रकाश मेरे चारों ओर कौंध गया। मैं धरती पर जा पड़ा। तभी मैंने एक आवाज सुनी जो मुझसे कह रही थी, शाऊल, ओ शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है? तब मैंने उत्तर में कहा, प्रभु तू कौन है? वह मुझसे बोला, मैं वही नासरी यीशु हूँ जिसे तू सता रहा है। जो मेरे साथ थे उन्होंने भी वह प्रकाश देखा, किंतु उस ध्वनि को जिसने मुझे संबोधित किया था वे समझ नहीं पाए। मैंने पूछा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? इस पर प्रभु ने मुझसे कहा, खड़ा हो और दमिश्क को चला जा। वहां तुझे वह सब बता दिया जाएगा जिसे करने के लिए तुझे नियुक्त किया गया है, क्योंकि मैं उस तीव्र प्रकाश की चौंध के कारण कुछ देख नहीं पा रहा था। सो मेरे साथी मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले चले और मैं दमिश्क जा पहुंचा। वहां हनन्याह नाम का एक व्यक्ति था, वह व्यवस्था का पालन करने वाला एक भक्त था। वहां के निवासी सभी यहूदियों के साथ उसकी अच्छी बोल चाल थी। वह मेरे पास आया और मेरे निकट खड़े होकर बोला, भाई शाऊल, फिर से देखने लग। और उसी क्षण मैं उसे देखने योग्य हो गया। उसने कहा, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने तुझे चुन लिया है कि तू उसकी इच्छा को जाने, उस धर्म स्वरूप को देखे और उसकी वाणी को सुने, क्योंकि तूने जो देखा है और जो सुना है उसके लिए सभी लोगों के सामने तू उसकी साक्षी होगा। सो अब तू और देर मत कर, खड़ा हो, बपतिस्मा ग्रहण कर और उसका नाम पुकारते हुए अपने पापों को धो डाल। फिर ऐसा हुआ कि जब मैं यरूशलेम लौटकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, तभी मेरी समाधि लग गई और मैंने देखा वह मुझसे कह रहा है, जल्दी कर और तुरंत यरूशलेम से बाहर चला जा, क्योंकि मेरे बारे में वे तेरी साक्षी स्वीकार नहीं करेंगे। सो मैंने कहा, प्रभु, ये लोग तो जानते हैं कि तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदी बनाते हुए और पीटते हुए मैं यहूदी आराधनालयों में घूमता फिरा हूँ, और तो और जब तेरे साक्षी स्तिफनुस का रक्त बहाया जा रहा था तब भी मैं अपना समर्थन देते हुए वहीं खड़ा था। जिन्होंने उसकी हत्या की थी मैं उनके कपड़ों की रखवाली कर रहा था। फिर वह मुझसे बोला, तू जा, क्योंकि मैं तुझे विधर्मियों के बीच दूर दूर तक भेजूंगा।
इस बात तक वे उसे सुनते रहे, पर फिर ऊंचे स्वर में पुकार कर चिल्ला उठे,
ऐसे मनुष्य से धरती को मुक्त करो, यह जीवित रहने योग्य नहीं है।
वे जब चिल्ला रहे थे और अपने कपड़ों को उतार उतार कर फेंक रहे थे तथा आकाश में धूल उड़ा रहे थे, तभी सेना नायक ने आज्ञा दी कि पौलुस को किले में ले जाया जाए। उसने कहा कि कोड़े लगा लगा कर उससे पूछताछ की जाए, ताकि पता चले कि उस पर लोगों के इस प्रकार चिल्लाने का कारण क्या है। किंतु जब वे उसे कोड़े लगाने के लिए बांध रहे थे, तभी वहां खड़े सेना नायक से पौलुस ने कहा,
किसी रोमी नागरिक को जो अपराधी न पाया गया हो, कोड़े लगाना क्या तुम्हारे लिए उचित है?
यह सुनकर सेना नायक सेनापति के पास गया और बोला,
यह तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि यह तो रोमी नागरिक है।
इस पर सेनापति ने उसके पास आकर पूछा,
मुझे बता, क्या तू रोमी नागरिक है?
पौलुस ने कहा,
हाँ।
इस पर सेनापति ने उत्तर दिया,
इस नागरिकता को पाने में मुझे बहुत सा धन खर्च करना पड़ा है।
पौलुस ने कहा,
किंतु मैं तो
जन्मजात रोमी नागरिक हूँ।
सो वे लोग जो उससे पूछताछ करने को थे तुरंत पीछे हट गए, और वह सेनापति भी यह समझकर कि वह एक रोमी नागरिक है और उसने उसे बंदी बनाया है, बहुत डर गया, क्योंकि वह सेनानायक इस बात का ठीक ठीक पता लगाना चाहता था कि यहूदियों ने पौलुस पर अभियोग क्यों लगाया। इसलिए उसने अगले दिन उसके बंधन खोल दिए। फिर प्रमुख याजकों और सर्वोच्च यहूदी महासभा को बुला भेजा और पौलुस को उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया। प्रेरितों के काम अध्याय 23। पौलुस ने यहूदी महासभा पर गंभीर दृष्टि डालते हुए कहा,
मेरे भाइयों, मैंने परमेश्वर के सामने आज तक उत्तम निष्ठा के साथ जीवन जिया है।
इस पर महायाजक हनन्याह ने पौलुस के पास खड़े लोगों को आज्ञा दी कि वे उसके मुंह पर थप्पड़ मारें। तब पौलुस ने उससे कहा,
अरे सफेदी पुती दीवार, तुझ पर परमेश्वर की मार पड़ेगी। तू यहाँ व्यवस्था के विधान के अनुसार मेरा कैसा न्याय करने बैठा है कि तू व्यवस्था के विरोध में मेरे थप्पड़ मारने की आज्ञा दे रहा है।
पौलुस के पास खड़े लोगों ने कहा,
परमेश्वर के महायाजक का अपमान करने का साहस तुझे हुआ कैसे?
पौलुस ने उत्तर दिया,
मुझे तो पता ही नहीं कि यह महायाजक है, क्योंकि शासन में लिखा है तुझे अपनी प्रजा के शासक के लिए बुरा बोल नहीं बोलना चाहिए।
फिर जब पौलुस को पता चला कि उनमें से आधे लोग सदूकी हैं और आधे फरीसी, तो महासभा के बीच उसने ऊंचे स्वर में कहा,
हे भाइयों, मैं फरीसी हूँ, एक फरीसी का बेटा हूँ। मरने के बाद फिर से जी उठने के प्रति मेरी मान्यता के कारण मुझ पर अभियोग चलाया जा रहा है।
उसके ऐसा कहने पर फरीसियों और सदूकियों में एक विवाद उठ खड़ा हुआ और सभा के बीच फूट पड़ गई। सदूकियों का कहना है कि पुनरुत्थान नहीं होता, न स्वर्गदूत होते हैं और न ही आत्माएं, किंतु फरीसियों का इनके अस्तित्व में विश्वास है। वहाँ बहुत शोरगुल मचा। फरीसियों के दल में से कुछ धर्मशास्त्री उठे और तीखी बहस करते हुए कहने लगे,
इस व्यक्ति में हम कोई खोट नहीं पाते हैं। यदि किसी आत्मा ने या किसी स्वर्गदूत ने इससे बातें की है तो इससे क्या?
क्योंकि यह विवाद हिंसक रूप ले चुका था, इससे वह सेनापति डर गया कि कहीं वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर डालें। सो उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे नीचे जाकर पौलुस को उनसे अलग करके छावनी में ले जाएं। अगली रात प्रभु ने पौलुस के निकट खड़े होकर उससे कहा,
हिम्मत रख, क्योंकि तूने जैसे दृढ़ता के साथ यरूशलेम में मेरी साक्षी दी है, वैसे ही रोम में भी तुझे मेरी साक्षी देनी है।
फिर दिन निकले, यहूदियों ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने शपथ उठाई कि जब तक वे पौलुस को मार नहीं डालेंगे, न कुछ खाएंगे न पिएंगे। उनमें से 40 से भी अधिक लोगों ने यह षड्यंत्र रचा था। वे प्रमुख याजकों और बुजुर्गों के पास गए और बोले,
हमने सौगंध उठाई है कि हम जब तक पौलुस को मार नहीं डालते हैं, तब तक ना हमें कुछ खाना है ना पीना। तो अब तुम और यहूदी महासभा सेनानायक से कहो कि वह उसे तुम्हारे पास ले आए, यह बहाना बनाते हुए कि तुम उसके विषय में और गहराई से छानबीन करना चाहते हो। इससे पहले कि वह यहाँ पहुँचे, हम उसे मार डालने को तैयार हैं।
किंतु पौलुस के भांजे को इस षड्यंत्र की भनक लग गई थी, सो वह छावनी में जा पहुँचा और पौलुस को सब कुछ बता दिया। इस पर पौलुस ने किसी एक सेनानायक को बुलाकर उसे कहा,
इस युवक को सेनापति के पास ले जाओ, क्योंकि इसे उससे कुछ कहना है।
सो वह उसे सेनापति के पास ले गया और बोला,
बंदी पौलुस ने मुझे बुलाया और मुझसे इस युवक को तेरे पास पहुंचाने को कहा, क्योंकि यह तुझसे कुछ कहना चाहता है।
सेनापति ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक और ले जाकर पूछा,
बता तू मुझसे क्या कहना चाहता है।
युवक बोला,
यहूदी इस बात पर एकमत हो गए हैं
कि वे पौलुस से और गहराई के साथ पूछताछ करने के बहाने महासभा में उसे लाए जाने की तुझसे प्रार्थना करे। इसीलिए उनकी मत सुनना, क्योंकि 40 से भी अधिक लोग घात लगाए उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने यह कसम उठाई है कि जब तक वे उसे मार न ले, उन्हें ना कुछ खाना है ना पीना। बस अब तेरी अनुमति की प्रतीक्षा में वे तैयार बैठे हैं।
फिर सेनापति ने युवक को यह आदेश देकर भेज दिया,
तू यह किसी को मत बताना कि तूने मुझे इसकी सूचना दे दी है।
फिर सेनापति ने अपने दो सेनानायकों को बुलाकर कहा,
200 सैनिकों, 70 घुड़सवारों और 100 भालेतों को कैसरिया जाने के लिए तैयार रखो। रात के तीसरे पहर चल पड़ने के लिए तैयार रहना। पौलुस की सवारी के लिए घोड़ों का भी प्रबंध रखना और उसे सुरक्षा पूर्वक राज्यपाल फेलिक्स के पास ले जाना।
उसने एक पत्र लिखा जिसका विषय था,
महामहिम राज्यपाल फेलिक्स को क्लोडियस लुसियास का नमस्कार पहुंचे। इस व्यक्ति को यहूदियों ने पकड़ लिया था और वे इसकी हत्या करने ही वाले थे कि मैंने ये जानकर कि यह एक रोमी नागरिक है, अपने सैनिकों के साथ जाकर इसे बचा लिया। मैं क्योंकि उस कारण को जानना चाहता था जिससे वे उस पर दोष लगा रहे थे, उसे उनकी महाधर्म सभा में ले गया। मुझे पता चला कि उनकी व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों के कारण उस पर दोष लगाया गया था, किंतु उस पर कोई ऐसा अभियोग नहीं था जो उसे मृत्युदंड के योग्य या बंदी बनाए जाने योग्य सिद्ध हो। फिर जब मुझे सूचना मिली कि वहां इस मनुष्य के विरोध में कोई षड्यंत्र रचा गया है, तो मैंने इसे तुरंत तेरे पास भेज दिया है और इस पर अभियोग लगाने वालों को यह आदेश दे दिया है कि वे इसके विरोध लगाए गए अपने अभियोग को तेरे सामने रखे।
सो सिपाहियों ने इन आज्ञाओं को पूरा किया और वे रात में ही पौलुस को अंतिपत्रिस के पास ले गए। फिर अगले दिन घुड़सवारों को उसके साथ आगे जाने के लिए छोड़कर वे छावनी को लौट आए। जब वे कैसरिया पहुंचे तो उन्होंने राज्यपाल को वह पत्र देते हुए पौलुस को उसे सौंप दिया। राज्यपाल ने पत्र पढ़ा और पौलुस से पूछा कि वह किस प्रदेश का निवासी है। जब उसे पता चला कि वह किलकिया का रहने वाला है तो उसने उससे कहा,
तुझ पर अभियोग लगाने वाले जब आ जाएंगे मैं तभी तेरी सुनवाई करूंगा।
उसने आज्ञा दी कि पौलुस को पहरे के भीतर हेरोदेस के महल में रखा जाए। प्रेरितों के काम अध्याय 24। 5 दिन बाद महायाजक हनन्या, कुछ बुजुर्ग यहूदी नेताओं और तिरतुल्लुस नाम के एक वकील को साथ लेकर कैसरिया आया। वे राज्यपाल के सामने पौलुस पर अभियोग सिद्ध करने आए थे। फेलिक्स के सामने पौलुस की पेशी होने पर मुकदमे की कार्यवाही आरंभ करते हुए तिरतुल्लुस बोला,
हे महोदय, तुम्हारे कारण हम बड़ी शांति के साथ रह रहे हैं और तुम्हारी दूरदृष्टि से देश में बहुत से अपेक्षित सुधार आए हैं। हे सर्वश्रेष्ठ फेलिक्स, हम बड़ी कृतज्ञता के साथ इसे हर प्रकार से हर कहीं स्वीकार करते हैं। तुम्हारा और अधिक समय ना लेते हुए मेरी प्रार्थना है कि कृपया आप संक्षेप में हमें सुन ले। बात यह है कि इस व्यक्ति को हमने एक उत्पाती के रूप में पाया है। सारी दुनिया के यहूदियों में इसने दंगे भड़कवाए हैं। यह नासरियों के पंथ का नेता है। इसने मंदिर को भी अपवित्र करने का यत्न किया है। हमने इसे इसलिए पकड़ा है, हम इस पर जो आरोप लगा रहे हैं उन सब को आप स्वयं इससे पूछताछ करके जान सकते हो।
इस अभियोग में यहूदी भी शामिल हो गए। वे दृढ़ता के साथ कह रहे थे कि ये सब बातें सच है। फिर राज्यपाल ने जब पौलुस को बोलने के लिए इशारा किया तो उसने उत्तर देते हुए कहा,
तू बहुत दिनों से इस देश का न्यायाधीश है, यह जानते हुए मैं प्रसन्नता के साथ अपना बचाव प्रस्तुत कर रहा हूँ। तू स्वयं यह जान सकता है कि अभी आराधना के लिए मुझे यरूशलेम गए बस 12 दिन बीते हैं। वहाँ मंदिर में मुझे न तो
किसी के साथ बहस करते पाया गया है और न ही आराधनालयों या नगर में कहीं और लोगों को दंगों के लिए भड़काते हुए। और अब तेरे सामने जिन अभियोगों को ये मुझ पर लगा रहे हैं उन्हें प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, किंतु मैं तेरे सामने यह स्वीकार करता हूँ कि मैं अपने पूर्वजों के परमेश्वर की आराधना अपने पंथ के अनुसार करता हूँ जिसे ये एक पंथ कहते हैं। मैं हर उस बात में विश्वास करता हूँ जिसे व्यवस्था बताती है और जो नबियों के ग्रंथों में लिखी हैं, और मैं परमेश्वर में वैसे ही भरोसा रखता हूँ जैसे स्वयं ये लोग रखते हैं कि धर्मियों और अधर्मियों दोनों का ही पुनरुत्थान होगा। इसलिए मैं भी परमेश्वर और लोगों के समक्ष सदा अपनी अंतरात्मा को शुद्ध बनाए रखने के लिए प्रयत्न करता रहता हूँ। बरसों तक दूर रहने के बाद मैं अपने दिन जनों के लिए उपहार लेकर भेंट चढ़ाने आया था, और जब मैं यह कर ही रहा था उन्होंने मुझे मंदिर में पाया। तब मैं विधि विधान पूर्वक शुद्ध था, न वहाँ कोई भीड़ थी और न कोई अशांति। एशिया से आए कुछ यहूदी वहाँ मौजूद थे। यदि मेरे विरुद्ध उनके पास कुछ है तो उन्हें तेरे सामने उपस्थित होकर मुझ पर आरोप लगाने चाहिए, या ये लोग जो यहाँ हैं वे बताएं कि जब मैं यहूदी महासभा के सामने खड़ा था तब उन्होंने मुझ में क्या खोट पाया, सिवाय इसके कि जब मैं उनके बीच में खड़ा था तब मैंने ऊंचे स्वर में कहा था, मरे हुओं में से जी उठने के विषय में आज तुम्हारे द्वारा मेरा न्याय किया जा रहा है।
फिर फेलिक्स, जो इस पंथ की पूरी जानकारी रखता था, मुकदमे की सुनवाई को स्थगित करते हुए बोला,
जब सेनानायक लूसियस आएगा मैं तभी तुम्हारे इस मुकदमे पर अपना निर्णय दूंगा।
फिर उसने सूबेदार को आज्ञा दी कि थोड़ी छूट देकर पौलुस को पहरे के भीतर रखा जाए और उसके मित्रों को उसकी आवश्यकताएं पूरी करने से ना रोका जाए। कुछ दिनों बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला के साथ वहां आया। वह एक यहूदी महिला थी। फेलिक्स ने पौलुस को बुलवा भेजा और यीशु मसीह में विश्वास के विषय में उससे सुना। किंतु जब पौलुस नेकी, आत्मसंयम और आने वाले न्याय के विषय में बोल रहा था तो फेलिक्स डर गया और बोला,
इस समय तू चला जा, अवसर मिलने पर मैं तुझे फिर बुलवाऊंगा।
उसी समय उसे यह आशा भी थी कि पौलुस उसे कुछ धन देगा, इसलिए फेलिक्स पौलुस को बातचीत के लिए प्रायः बुलवा भेजता था। 2 साल ऐसे बीत जाने के बाद फेलिक्स का स्थान पुरुखियुस फेस्तुस ने ग्रहण कर लिया। क्योंकि फेलिक्स यहूदियों को प्रसन्न रखना चाहता था, इसलिए उसने पौलुस को बंदी गृह में ही रहने दिया। प्रेरितों के काम, अध्याय 25। फिर फेस्तुस ने उस प्रदेश में प्रवेश किया और 3 दिन बाद वह कैसरिया से यरूशलेम को रवाना हो गया। वहां प्रमुख याजकों और यहूदियों के मुखियाओं ने पौलुस के विरुद्ध लगाए गए अभियोग उसके सामने रखे और उससे प्रार्थना की कि वह पौलुस को यरूशलेम भिजवाकर उनका पक्ष ले। वे रास्ते में ही उसे मार डालने का षड्यंत्र बनाए हुए थे। फेस्तुस ने उत्तर दिया,
पौलुस कैसरिया में बंदी है और वह जल्दी ही वहां जाने वाला है।
उसने कहा,
तुम अपने कुछ मुखियाओं को मेरे साथ भेज दो और यदि उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो वे वहां उस पर अभियोग लगाएं।
उनके साथ कोई 8-10 दिन बात कर फेस्तुस कैसरिया चला गया। अगले ही दिन अदालत में न्याय आसन पर बैठकर उसने आज्ञा दी कि पौलुस को पेश किया जाए। जब वह पेश हुआ तो यरूशलेम से आए यहूदी उसे घेर कर खड़े हो गए। उन्होंने उस पर अनेक गंभीर आरोप लगाए किंतु उन्हें वे प्रमाणित नहीं कर सके। पौलुस ने स्वयं अपना बचाव करते हुए कहा,
मैंने यहूदियों के विधान के विरोध में कोई काम नहीं किया है, न ही मंदिर के विरोध में और न ही कैसर के विरोध में।
फेस्तुस यहूदियों को प्रसन्न करना चाहता था, इसलिए उत्तर में उसने पौलुस से कहा,
तो क्या तू यरूशलेम जाना चाहता है? ताकि मैं वहाँ तुझ पर लगाए गए इन अभियोगों का न्याय करूँ।
पौलुस ने कहा,
इस समय मैं कैसर की अदालत के सामने खड़ा हूँ, मेरा न्याय यहीं किया जाना चाहिए। मैंने यहूदियों के साथ कुछ बुरा नहीं किया है, इसे तू भी बहुत अच्छी तरह जानता है। यदि मैं किसी अपराध का दोषी हूँ और मैंने कुछ ऐसा किया है जिसका दंड मृत्यु है, तो मैं मरने से बचना नहीं चाहूँगा। किंतु यदि ये लोग मुझ पर जो अभियोग लगा रहे हैं उनमें कोई सत्य नहीं है, तो मुझे कोई भी इन्हें नहीं सौंप सकता। यही कैसर से मेरी प्रार्थना है।
अपनी परिषद से सलाह करने के बाद फेस्तुस ने उसे उत्तर दिया,
तूने कैसर से पुनर्विचार की प्रार्थना की है, इसलिए तुझे कैसर के सामने ही ले जाया जाएगा।
कुछ दिन बाद राजा अग्रिप्पा और बिरनीके फेस्तुस से मिलते कैसरिया आए। जब वे वहां कई दिन बिता चुके तो फेस्तुस ने राजा के सामने पौलुस के मुकदमे को इस प्रकार समझाया,
यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जिसे फेलिक्स बंदी के रूप में छोड़ गया था। जब मैं यरूशलेम में था, प्रमुख याजकों और बुजुर्गों ने उसके विरुद्ध मुकदमा प्रस्तुत किया था और मांग की थी कि उसे दंडित किया जाए। मैंने उनसे कहा, रोमियो में ऐसा चलन नहीं है कि किसी व्यक्ति को जब तक वादी प्रतिवादी को आमने सामने न करा दिया जाए और उस पर लगाए गए अभियोगों से उसे बचाव का अवसर न दे दिया जाए, उसे दंड के लिए सौंपा जाए। सो वे लोग जब मेरे साथ यहाँ आए तो मैंने बिना देर लगाए अगले दिन न्यायासन पर बैठकर उस व्यक्ति को पेश किए जाने की आज्ञा दी। जब उस पर दोष लगाने वाले बोलने खड़े हुए तो उन्होंने उस पर ऐसा कोई दोष नहीं लगाया जैसा कि मैं सोच रहा था, बल्कि उनके अपने धर्म की कुछ बातों पर ही और यीशु नाम के एक व्यक्ति पर जो मर चुका है उनमें कुछ मतभेद था। यद्यपि पौलुस का दावा है कि वह जीवित है, मैं समझ नहीं पा रहा था कि इन विषयों की छानबीन कैसे की जाए। इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्या वह अपने इन अभियोगों का न्याय कराने के लिए यरूशलेम जाने को तैयार है। किंतु पौलुस ने जब प्रार्थना की कि उसे सम्राट के न्याय के लिए ही वहां रखा जाए, तो मैंने आदेश दिया कि मैं जब तक उसे कैसर के पास ना भिजवा दूं, उसे यहीं रखा जाए।
इस पर अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा,
इस व्यक्ति की सुनवाई मैं स्वयं करना चाहता हूँ।
फेस्तुस ने कहा,
तुम उसे कल सुन लेना।
सो अगले दिन अग्रिप्पा और बिरनीके बड़ी सजधज के साथ आए और उन्होंने सेना नायकों तथा नगर के प्रमुख व्यक्तियों के साथ सभा भवन में प्रवेश किया। फेस्तुस ने आज्ञा दी और पौलुस को वहाँ ले आया गया। फिर फेस्तुस बोला,
महाराजा अग्रिप्पा तथा उपस्थित सज्जनों, तुम इस व्यक्ति को देख रहे हो जिसके विषय में समूचा यहूदी समाज यरूशलेम में और यहाँ मुझसे चिल्ला चिल्ला कर मांग करता रहा है कि इसे अब और जीवित नहीं रहने देना चाहिए। किंतु मैंने जांच लिया है कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया है कि इसे मृत्यु दंड दिया जाए, क्योंकि इसने स्वयं सम्राट से पुनर्विचार की प्रार्थना की है, इसलिए मैंने इसे वहां भेजने का निर्णय लिया है। किंतु इसके विषय में सम्राट के पास लिख भेजने को मेरे पास कोई निश्चित बात नहीं है। मैं इसे इसलिए आप लोगों के सामने और विशेष रूप से हे महाराजा अग्रिप्पा तुम्हारे सामने लाया हूँ, ताकि इस जांच पड़ताल के बाद लिखने को मेरे पास कुछ हो, कुछ भी हो, मुझे किसी बंदी को उसका अभियोग पत्र तैयार किए बिना वहाँ भेज देना असंगत जान पड़ता है।
प्रेरितों के काम अध्याय 26। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा,
तुझे स्वयं अपनी ओर से बोलने की अनुमति है।
इस पर पौलुस ने अपना हाथ उठाया और अपने बचाव में बोलना आरंभ किया।
हे राजा अग्रिप्पा, मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि यहूदियों ने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं, उन सब बातों के बचाव में मैं तेरे सामने बोलने जा रहा हूँ। विशेष रूप से यह इसलिए सत्य है कि तुझे सभी यहूदी प्रथाओं और उनके विवादों का ज्ञान है। इसलिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि धैर्य के साथ मेरी बात सुनी जाए। सभी यहूदी जानते हैं कि प्रारंभ से ही स्वयं अपने देश में और यरूशलेम में भी बचपन से ही मैंने कैसा जीवन जिया है। वे मुझे बहुत समय से जानते हैं और यदि वे चाहें तो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि मैंने हमारे धर्म के एक सबसे अधिक कट्टर पंथ के अनुसार एक फरीसी के रूप में जीवन जिया है। और अब इस विचाराधीन स्थिति में खड़े हुए मुझे उस वचन का ही भरोसा है जो परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों को दिया था। यह वही वचन है जिसे हमारी बारहों जातियां दिन रात तल्लीनता से परमेश्वर की सेवा करते हुए प्राप्त करने का भरोसा रखती है। हे राजन, इसी भरोसे के कारण मुझ पर यहूदियों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। तुम में से किसी को भी यह बात विश्वास के योग्य क्यों नहीं लगती है कि परमेश्वर मरे हुओं को जिला देता है? मैं भी सोचा करता था नासरी यीशु के नाम का विरोध करने के लिए जो भी बन पड़े वह बहुत कुछ करूं, और ऐसा ही मैंने यरूशलेम में किया भी। मैंने परमेश्वर के बहुत से भक्तों को जेल में ठूंस दिया, क्योंकि प्रमुख याजकों से इसके लिए मुझे अधिकार प्राप्त था, और जब उन्हें मारा गया तो मैंने अपना मत उनके विरोध में दिया। यहूदी आराधनालयों में मैं उन्हें प्रायः दंड दिया करता और परमेश्वर के विरोध में बोलने के लिए उन पर दबाव डालने का यत्न करता रहता। उनके प्रति मेरा क्रोध इतना अधिक था कि उन्हें सताने के लिए मैं बाहर के नगरों तक गया। ऐसी ही एक यात्रा के अवसर पर जब मैं प्रमुख याजकों से अधिकार और आज्ञा पाकर दमिश्क जा रहा था, तभी दोपहर को जब मैं अभी मार्ग में ही था कि मैंने हे राजन स्वर्ग से एक प्रकाश उतरते देखा। उसका तेज सूर्य से भी अधिक था। वह मेरे और मेरे साथ के लोगों के चारों ओर कौंध गया। हम सब धरती पर लुढ़क गए। फिर मुझे एक वाणी सुनाई दी। वह इब्रानी भाषा में मुझसे कह रही थी, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है? पैने की नोक पर लात मारना तेरे बस की बात नहीं है। फिर मैंने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने उत्तर दिया, मैं यीशु हूँ जिसे तू यातनाएं दे रहा है, किंतु अब तू उठ और अपने पैरों पर खड़ा हो जा। मैं तेरे सामने इसलिए प्रकट हुआ हूँ कि तुझे एक सेवक के रूप में नियुक्त करूँ, और जो कुछ तूने मेरे विषय में देखा है और जो कुछ मैं तुझे दिखाऊंगा उसका तू साक्षी रहे। मैं जिन यहूदियों और विधर्मियों के पास उनकी आँखें खोलने, उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर लाने और शैतान की ताकत से परमेश्वर की ओर मोड़ने के लिए तुझे भेज रहा हूँ, उनसे तेरी रक्षा करता रहूँगा। इससे वे पापों की क्षमा प्राप्त करेंगे और उन लोगों के बीच स्थान पाएंगे जो मुझ में विश्वास के कारण पवित्र हुए हैं। हे राजन अग्रिप्पा, इसलिए तभी से उस दर्शन की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन न करते हुए, बल्कि उसके विपरीत, मैं पहले उन्हें दमिश्क में, फिर यरूशलेम में और यहूदिया के समूचे क्षेत्र में और गैर यहूदियों को भी उपदेश देता रहा कि मन फिराव के परमेश्वर की ओर मुड़ें और मन फिराव के योग्य काम करें। इसी कारण जब मैं यहाँ मंदिर में था, यहूदियों ने मुझे पकड़ लिया और मेरी हत्या का यत्न किया, किंतु आज तक मुझे परमेश्वर की सहायता मिलती रही है और इसलिए मैं यहाँ छोटे और बड़े सभी लोगों के सामने साक्षी देता खड़ा हूँ। मैं बस उन बातों को छोड़कर और कुछ नहीं कहता जो नबियों और मूसा के अनुसार घटनी ही थी कि मसीह को यातनाएं भोगनी होंगी और वही मरे हुओं में से पहला जी उठने वाला होगा और वह यहूदियों और गैर यहूदियों को ज्योति का संदेश देगा।
वह अपने बचाव में जब इन बातों को कह ही रहा था कि फेस्तुस ने चिल्लाकर कहा,
पौलुस तेरा दिमाग खराब हो गया है। तेरी अधिक पढ़ाई तुझे पागल बनाए डाल रही है।
पौलुस ने कहा,
हे परम गुनी फेस्तुस, मैं पागल नहीं हूँ, बल्कि जो बातें मैं कह रहा हूँ वे सत्य हैं और संगत भी। स्वयं राजा इन बातों को जानता है और मैं मुक्त भाव से उससे कह सकता हूँ। मेरा निश्चय है कि इनमें से कोई भी बात उसकी आँखों से ओझल नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि यह बात किसी कोने में नहीं की गई। हे राजा अग्रिप्पा, नबियों ने जो लिखा है क्या तू उसमें विश्वास रखता है? मैं जानता हूँ कि तेरा विश्वास है।
इस पर अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा,
क्या तू यह सोचता है कि इतनी सरलता से तू मुझे मसीही बनने को मना लेगा?
पौलुस ने उत्तर दिया,
थोड़े समय में चाहे अधिक समय में, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि न केवल तू बल्कि वे सब भी जो आज मुझे सुन रहे हैं वैसे ही हो जाएं जैसा मैं हूँ, सिवाय इन जंजीरों के।
फिर राजा खड़ा हो गया और उसके साथ ही राज्यपाल बिरनिके और साथ में बैठे हुए लोग भी उठ खड़े हुए। वहाँ से बाहर निकलकर वे आपस में बात करते हुए कहने लगे, इस व्यक्ति ने तो ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे इसे मृत्यु दंड या कारावास मिल सके। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा,
यदि इसने कैसर के सामने पुनः विचार की प्रार्थना न की होती तो इस व्यक्ति को छोड़ा जा सकता था।
प्रेरितों के काम अध्याय 27। जब यह निश्चय हो गया कि हमें जहाज से इटली जाना है, तो पौलुस तथा कुछ दूसरे बंदियों को सम्राट की सेना के यूलियस नाम के एक सेनानायक को सौंप दिया गया। अद्रमुत्तियम से हम एक जहाज पर चढ़े जो एशिया के तटीय क्षेत्रों से होकर जाने वाला था और समुद्र यात्रा पर निकल पड़े। थिसलुनी के निवासी एक मकदूनी जिसका नाम अरिस्तर्खुस था भी हमारे साथ था। अगले दिन हम सैदा में उतरे। वहां यूलियस ने पौलुस के साथ अच्छा व्यवहार किया और उसे उसके मित्रों का स्वागत सत्कार ग्रहण करने के लिए उनके यहाँ जाने की अनुमति दे दी। वहां से हम समुद्र मार्ग से फिर चल पड़े। हम साइप्रस की आड़ लेकर चल रहे थे क्योंकि हवाएं हमारे प्रतिकूल थीं। फिर हम किलकिया और पंफूलिया के सागर को पार करते हुए लुकिया और मीरा पहुंचे। वहां सेनानायक को सिकंदरिया का इटली जाने वाला एक जहाज मिला। उसने हमें उस पर चढ़ा दिया। कई दिन तक हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बड़ी कठिनाई के साथ कनिदुस के सामने पहुंचे, क्योंकि हवा हमें अपने मार्ग पर नहीं बने रहने दे रही थी। सो हम सलभौने के सामने से क्रीत की ओट में अपनी नाव बढ़ाने लगे। क्रीत के किनारे किनारे बड़ी कठिनाई से नाव को आगे बढ़ाते हुए हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जिसका नाम था सुरक्षित बंदरगाह। यहाँ से लसेया नगर पास ही था। समय बहुत बीत चुका था और नाव को आगे बढ़ाना भी संकटपूर्ण था, क्योंकि तब तक उपवास का दिन समाप्त हो चुका था। इसलिए पौलुस ने चेतावनी देते हुए उनसे कहा,
हे पुरुषो, मुझे लगता है कि हमारी यह सागर यात्रा विनाशकारी होगी, न केवल माल असबाब और जहाज के लिए बल्कि हमारे प्राणों के लिए भी।
किंतु पौलुस ने जो कहा था उस पर कान देने के बजाय उस सेनानायक ने जहाज के मालिक और कप्तान की बातों का अधिक विश्वास किया, और वह बंदरगाह शीत ऋतु के अनुकूल नहीं था, इसलिए अधिकतर लोगों ने यदि हो सके तो फिनिक्स पहुंचने का प्रयत्न करने की ही ठानी और सर्दी वहीं बिताने का निश्चय किया। फिनिक्स क्रीत का एक ऐसा बंदरगाह है जिसका मुख दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम दोनों के ही सामने पड़ता है। जब दक्षिणी पवन हौले हौले बहने लगा तो उन्होंने सोचा कि जैसा उन्होंने चाहा था वैसा उन्हें मिल गया है। सो उन्होंने लंगर उठा लिया और क्रीत के किनारे किनारे जहाज बढ़ाने लगे। किंतु अभी कोई अधिक समय नहीं बीता था कि द्वीप की ओर से एक भीषण आंधी उठी और आर पार लपेटती चली गई। यह उत्तर पूर्वी आंधी कहलाती थी। जहाज तूफान में गिर गया। वह आंधी को चीर कर आगे नहीं बढ़ पा रहा था, सो हमने उसे यूं ही छोड़कर हवा के रुख बहने दिया। हम क्लोदा नाम के एक छोटे से द्वीप की ओट में बहते हुए बड़ी कठिनाई से रक्षा नौकाओं को पा सके। फिर रक्षा नौकाओं को उठाने के बाद जहाज को रस्सों से लपेट कर बांध दिया गया और कहीं सुरतिस के उथले पानी में फंस न जाए, इस डर से उन्होंने पालें उतार दी और जहाज को बहने दिया। दूसरे दिन तूफान के घातक थपेड़े खाते हुए वे जहाज से माल असबाब बाहर फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने ही हाथों से जहाज पर रखे उपकरण फेंक दिए। फिर बहुत दिनों तक जब न सूरज दिखाई दिया न तारे और तूफान अपने घातक थपेड़े मारता ही रहा, तो हमारे बच पाने की आशा पूरी तरह जाती रही। बहुत दिनों से किसी ने भी कुछ खाया नहीं था। तब पौलुस ने उनके बीच खड़े होकर कहा,
हे पुरुषो, यदि क्रीत से रवाना न होने की मेरी सलाह तुमने मानी होती तो तुम इस विनाश और हानि से बच जाते, किंतु मैं तुमसे अब भी आग्रह करता हूँ कि अपनी हिम्मत बांधे रखो, क्योंकि तुम में से किसी को भी अपने प्राण नहीं खोने हैं। हाँ, बस यह जहाज नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पिछली रात उस परमेश्वर का एक स्वर्ग दूत, जिसका मैं हूँ और जिसकी मैं सेवा करता हूँ, मेरे पास आकर खड़ा हुआ और बोला, पौलुस डर मत, तुझे निश्चय ही कैसर के सामने खड़ा होना है और उन सब को जो तेरे साथ यात्रा कर रहे हैं परमेश्वर ने तुझे दे दिया है, सो लोगों अपना साहस बनाए रखो, क्योंकि परमेश्वर में मेरा विश्वास है, इसलिए जैसा मुझे बताया गया है ठीक वैसा ही होगा, किंतु हम किसी टापू के उथले पानी में अवश्य जा फंसेंगे।
फिर जब 14वीं रात आई, हम अद्रिया के सागर में थपेड़े खा रहे थे, तभी आधी रात के आसपास जहाज के चालकों को लगा जैसे कोई तट पास में ही हो। उन्होंने सागर की गहराई नापी तो पाया कि वहाँ कोई 80 हाथ गहराई थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने पानी की गहराई फिर नापी और पाया कि अब गहराई 60 हाथ रह गई थी। इस डर से कि वे कहीं किसी चट्टानी उथले किनारे में न फंस जाएं, उन्होंने जहाज के पिछले हिस्से से 4 लंगर फेंके और प्रार्थना करने लगे कि किसी तरह दिन निकल आए। उधर जहाज के चलाने वाले जहाज से भाग निकलने का प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने यह बहाना बनाते हुए कि वे जहाज के अगले भाग से कुछ लंगर डालने के लिए जा रहे हैं, रक्षा नौकाएं समुद्र में उतार दी। तभी सेनानायक से पौलुस ने कहा,
यदि ये लोग जहाज पर नहीं रुके तो तुम भी नहीं बच पाओगे।
सो सैनिकों ने रस्सियों को काट कर रक्षा नौकाओं को नीचे गिरा दिया। भोर होने से थोड़ा पहले पौलुस ने यह कहते हुए सब लोगों से थोड़ा भोजन कर लेने का आग्रह किया कि 14 दिन हो चुके हैं और तुम निरंतर चिंता के कारण भूखे रहे हो, तुमने कुछ भी तो नहीं खाया है। मैं तुमसे अब कुछ खाने के लिए इसलिए आग्रह कर रहा हूँ कि तुम्हारे जीवित रहने के लिए यह आवश्यक है, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल तक बांका नहीं होना है। इतना कह चुकने के बाद उसने थोड़ी रोटी ली और सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया, फिर रोटी को विभाजित किया और खाने लगा। इससे उन सब की हिम्मत बढ़ी और उन्होंने भी थोड़ा भोजन लिया। जहाज पर कुल मिलाकर हम 276 व्यक्ति थे। पूरा खाना खा चुकने के बाद उन्होंने समुद्र में अनाज फेंक कर जहाज को हल्का किया। जब भोर हुई तो वे उस धरती को पहचान नहीं पाए, किंतु उन्हें लगा जैसे वहाँ कोई किनारेदार खाड़ी है। उन्होंने निश्चय किया कि यदि हो सके तो जहाज को वहाँ टिका दें। सो उन्होंने लंगर काट कर ढीले कर दिए और उन्हें समुद्र में नीचे गिर जाने दिया। उसी समय उन्होंने पतवारों से बंधे रस्से ढीले कर दिए, फिर जहाज के अगले पतवार चढ़ाकर तट की ओर बढ़ने लगे। और उनका जहाज रेते में जा टकराया। जहाज का अगला भाग उसमें फंसकर अचल हो गया और शक्तिशाली लहरों के थपेड़ों से जहाज का पिछला भाग टूटने लगा। तभी सैनिकों ने कैदियों को मार डालने की एक योजना बनाई ताकि उनमें से कोई भी तैरकर बच ना निकले, किंतु सेनानायक पौलुस को बचाना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें उनकी योजना को अमल में लाने से रोक दिया। उसने आज्ञा दी कि जो भी तैर सकते हैं वे पहले ही कूद कर किनारे जा लगें और बाकी के लोग तख्तों या जहाज के दूसरे टुकड़ों के सहारे चले जाएं। इस प्रकार हर कोई सुरक्षा के साथ किनारे आ लगा। प्रेरितों के काम अध्याय 28। इस सब कुछ से सुरक्षा पूर्वक बच निकलने के बाद हमें पता चला कि उस द्वीप का नाम माल्टा था। वहां के मूल निवासियों ने हमारे साथ असाधारण रूप से अच्छा व्यवहार किया। क्योंकि सर्दी थी और वर्षा होने लगी थी, इसलिए उन्होंने आग जलाई और हम सब का स्वागत किया। पौलुस ने लकड़ियों का एक गट्ठर बनाया और वह जब लकड़ियों को आग पर रख रहा था तभी गर्मी खाकर एक विषैला नाग बाहर निकला और उसने उसके हाथ को डस लिया। वहां के निवासियों ने जब उस जंतु को उसके हाथ से लटकते देखा तो वे आपस में कहने लगे,
निश्चय ही यह व्यक्ति एक हत्यारा है। यद्यपि यह सागर से बच निकला है किंतु न्याय इसे जीने नहीं दे रहा है।
किंतु पौलुस ने उस नाग को आग में ही झटक दिया। पौलुस को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। लोग सोच रहे थे कि वह या तो सूज जाएगा या फिर बरबस धरती पर गिरकर मर जाएगा। किंतु बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद और यह देखकर कि उसे असाधारण रूप से कुछ भी नहीं हुआ है, उन्होंने अपनी धारणा बदल दी और बोले,
यह तो कोई देवता है।
उस स्थान के पास ही उस द्वीप के प्रधान अधिकारी पब्लियस के खेत थे। उसने अपने घर ले जाकर हमारा स्वागत सत्कार किया। बड़े मुक्त भाव से 3 दिन तक वह हमारी आवभगत करता रहा। पब्लियस का पिता बिस्तर में था, उसे बुखार और पेचिश हो रही थी। पौलुस उससे मिलने भीतर गया, फिर प्रार्थना करने के बाद उसने उस पर अपने हाथ रखे और वह अच्छा हो गया। इस घटना के बाद तो उस द्वीप के शेष सभी रोगी भी वहां आए और वे ठीक हो गए। अनेक उपहारों द्वारा उन्होंने हमारा मान बढ़ाया और जब हम वहां से नाव पर आगे को चले तो उन्होंने सभी आवश्यक वस्तुएं लाकर हमें दी। फिर सिकंदरिया के एक जहाज पर हम वही चल पड़े। इस द्वीप पर ही जहाज जाड़े में रुका हुआ था। जहाज के अगले भाग पर जुड़वा भाइयों का चिन्ह अंकित था। फिर हम सरकुस जा पहुंचे, जहां हम 3 दिन ठहरे। वहां से जहाज द्वारा हम रेगियम पहुंचे और फिर अगले ही दिन दक्षिणी हवा चल पड़ी, सो अगले दिन हम पुतियुली आ गए। वहां हमें कुछ बंधु मिले और उन्होंने हमें वहां 7 दिन ठहरने को कहा और इस तरह हम रोम आ पहुंचे। जब वहां के बंधुओं को हमारी सूचना मिली तो वे अप्पियुस का बाजार और 3 सराय तक हमसे मिलने आए। पौलुस ने जब उन्हें देखा तो परमेश्वर को धन्यवाद देकर वह बहुत उत्साहित हुआ। जब हम रोम पहुंचे तो एक सिपाही की देखरेख में पौलुस को अपने आप अलग से रहने की अनुमति दे दी गई। 3 दिन बाद पौलुस ने यहूदी नेताओं को बुलाया और उनके एकत्र हो जाने पर वह उनसे बोला,
हे भाइयों, चाहे मैंने अपनी जाति या अपने पूर्वजों के विधि विधान के प्रतिकूल कुछ भी नहीं किया है, तो भी यरूशलेम में मुझे बंदी के रूप में रोमियों को सौंप दिया गया था। उन्होंने मेरी जांच पड़ताल की और मुझे छोड़ना चाहा, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने किया ही नहीं था जो मृत्यु दंड के लायक होता। किंतु जब यहूदियों ने आपत्ति की तो मैं कैसर से पुनर्विचार की प्रार्थना करने को विवश हो गया। इसलिए नहीं कि मैं अपने ही लोगों पर कोई आरोप लगाना चाहता था, यही कारण है जिससे मैं तुमसे मिलना और बातचीत करना चाहता था, क्योंकि यह इसराइल का वह भरोसा ही है जिसके कारण मैं जंजीर में बंधा हूँ।
यहूदी नेताओं ने पौलुस से कहा,
तुम्हारे बारे में यहूदिया से न तो कोई पत्र ही मिला है और न ही वहाँ से आने वाले किसी भी भाई ने तेरा कोई समाचार दिया और न तेरे बारे में कोई बुरी बात कही।
किंतु तेरे विचार क्या है, यह हम तुझसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लोग सब कहीं इस पंथ के विरोध में बोलते हैं।
सो उन्होंने उसके साथ एक दिन निश्चित किया और फिर जहाँ वह ठहरा था बड़ी संख्या में आकर वे लोग एकत्र हो गए। मूसा की व्यवस्था और नबियों के ग्रंथों से यीशु के विषय में उन्हें समझाने का जतन करते हुए उसने परमेश्वर के राज्य के बारे में अपनी साक्षी दी और समझाया। वह सुबह से शाम तक इसी में लगा रहा। उसने जो कुछ कहा था उससे कुछ तो सहमत हो गए, किंतु कुछ ने विश्वास नहीं किया। फिर आपस में एक दूसरे से असहमत होते हुए वे वहां से जाने लगे। तब पौलुस ने एक यह बात और कही,
यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा पवित्र आत्मा ने तुम्हारे पूर्वजों से कितना ठीक कहा था, जाकर इन लोगों से कह दे, तुम सुनोगे पर न समझोगे, कदाचित तुम बस देखते ही देखते रहोगे पर न बुझोगे कभी भी, क्योंकि इनका हृदय जड़ता से भर गया, कान इनके कठिनता से श्रवण करते और इन्होंने अपनी आँखें बंद कर ली, क्योंकि कभी ऐसा न हो जाए कि ये अपनी आँख से देखें और कान से सुने और हृदय से समझें और कदाचित लौटें, मुझको स्वस्थ करना पड़े उनको। इसलिए तुम्हें जान लेना चाहिए कि परमेश्वर का यह उद्धार विधर्मियों के पास भेज दिया गया है, वे इसे सुनेंगे।
वहाँ किराए के अपने मकान में पौलुस पूरे 2 साल तक ठहरा। जो कोई भी उससे मिलने आता वह उसका स्वागत करता। वह परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह के विषय में उपदेश देता। वह इस कार्य को पूरी निर्भयता और बिना कोई बाधा माने किया करता था।